الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا
ومولانا
محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك. إليك والعمل لبيك ذا الموالد، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، آمین. پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله. یہ بتائیے کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ جی آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ वॉइस क्लियर है ना? वॉइस ओके है ना जी? मुझे बता रही है अजीब सी आवाज आ रही थी। यानी ये बताइए कि आपका कैसा गुजरा आपका वीकेंड? अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सोचा छोटी सी बात है और सोचा आपसे शेयर करूं इंशाल्लाह, लेकिन है बहुत ही काम की, इंशाल्लाह फायदा देगी। और आप ये देखिएगा कि जब हमें पता होता है ना इन चीजों के बारे में, तो फिर हमें समझ आती है जिंदगी की हकीकत ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको मेरी आवाज एक दफा दोबारा कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है ना मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ तेज बोलूँ, वॉइस ओके है ना जी? एक छोटा सा वाकया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नजर आता है। सैयदना उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के दुश्मन का अंजाम ना, कि किस तरह से उनके दुश्मन थे और उनका अंजाम क्या हुआ, उसके बारे में छोटी सी बात है। प्लीज आप मुझे वॉइस कंफर्म कीजिए, मुझे मैसेज आप लोग के नजर नहीं आ रहे हैं, कि आप लोग मुझे प्लीज एक दफा दोबारा कंफर्म कीजिए। वॉइस ओके है सबके लिए? ओके है ना? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली एक छोटा सा वाकया है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, कि एक अंधा शख्स जिसका हाथ भी मफलूज था और सूख कर कांटा हो चुका था, बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए कह रहा था, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा। यानी वो दुआ कैसे कर रहा था कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा। यानी एक तो सूखा हुआ भी था, कांटा हो चुका था सूखकर, साथ में उसका हाथ भी मफलूज था। तो दुआ क्या कर रहा था कि ए अल्लाह मुझे माफ फरमा, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। लोगों को उसकी इस बात से ताज्जुब हुआ और कहा, अल्लाह से डरो, क्या ऊटपटांग कहे जा रहे हो? उस शख्स ने कहा, अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि मैं ठीक ही कह रहा हूँ। फिर इसने बताया, मैं इन लोगों में शामिल था जिन्होंने सैयदना उस्मान रदी अल्लाहु अन्हु को शहीद करने में मेन किरदार अदा किया है। हम उनके कमरे में दाखिल हुए तो उनकी अहलिया, उनकी जो अहलिया थी वो भी वहां मौजूद थी। इस गंभीर सूरत हाल में भी उन्होंने पर्दे का खास एहतमाम कर रखा था और उन्होंने अपने चेहरे को भी ढांपा हुआ था। मैंने उन्हें तहकुमाना लहजे में कहा, अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ। वो कहने लगी, क्यों? मैंने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता हूँ। वो कहने लगी, तुम्हें पता नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान रदी अल्लाहु अन्हु के बारे में क्या फरमाया है? आपने फरमाया है कि मैं इससे क्यों ना हया करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया महसूस करते हैं। आगे सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, कि मैं उससे क्यों ना हया करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया महसूस करते हैं। मेरे दीगर साथी तो यह जुमला सुनकर शर्मिंदा हो गए और पीछे हट गए, लेकिन मैं अपनी बात पर मिसर रहा, यानी डटा रहा। और हुआ क्या कि वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाने पर किसी सूरत भी आमादा ना हुई, मैंने वैसे ही एक जनाने जिसे कहा जाए एक जनाटे दा थप्पड़ इनके चेहरे पर रसीद कर दिया। सैयदा नाइला कहने लगी, अल्लाह ताला तेरी आंखों को अंधा और हाथ को मफलूज करे और तुम्हें कभी माफ ना करे। अल्लाह की कसम, मैं जैसे ही बाहर निकला मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे हाथ ने काम करना छोड़ दिया और ये खुश होने लगा। ये दोनों दुआएं तो पूरी हो चुकी हैं, मुझे खदशा है कि इनकी तीसरी दुआ भी कबूल ना कर ली जाए। अल्लाहु अकबर। आप सोचिए, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लजीना मिन कब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वाग़फिर लना वारहमना انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। आप ये देखिए, आमीन। कितनी ज्यादा आई ओपनिंग वाक्य है ना, औरत के चेहरे का। आप हमारे यहाँ कितना आम होता है कि चेहरे का निकाब भी है कि नहीं। वो खातून हया कर रही है, किसे? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से, उनकी बीवी है। और क्या कहती है, मैं उनसे हया क्यों ना करूं जिससे आसमान पर जो फरिश्ते हैं वो भी उनसे हया करते हैं। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اسرار کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ پردہ نہیں ہٹایا انہوں نے چہرے کا, تو اس انسان نے اسی پردے والے چہرے پر زوردار قسم کا مردانہ انداز میں تھپڑ رسید کر دیا. لیکن اس کے بعد تین بد دعائیں جو انہوں نے دیں, تو جس پر ظلم کیا جائے اور اگر وہ ظلم میں جس پر ظالم, جسے کہا جائے مظلوم, اگر کوئی کسی ظالم کے خلاف دعا کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا آسمان کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دو دعا تو اس کی قبول ہو گئی انسٹنٹ, نا ان کی دعا قبول ہو گئی نائلہ رضی اللہ عنہ. لیکن آخری دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم کبھی نہ معاف کریں, تو وہ جب طواف کر رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا نا مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, مجھے اے اللہ مجھے معاف کر لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا. اسی وجہ سے جی جی امید ہی نہیں تھی نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی آئی اوپننگ مثال تھی نا, کہ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا الحمدللہ جسے کہا جائے کہ یہ آپ کو ملے گا. اور یہ میں نے آپ کو بک بتایا تھا دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات, اس کے اندر یہ واقعہ بہت ہی آئی اوپننگ واقعہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی پہ ناروا ظلم نہ کریں نا, کیونکہ مظلوم کی دعا جسے کہا جائے قبول ہوتی ہے نا, اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ظلم کرنے سے بچائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہماری جو خطائیں ہیں, جو ہمارا نسیان ہے, اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو درگزر کرے نا. آمین نا. جی جی آپ کہاں سے بائی کر سکتے ہیں؟ یہ دارالسلام کا آن لائن اسٹور ہے, وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا, اس کے علاوہ آپ کو جیسے اور بھی بک اسٹور میں جہاں دارالسلام کی بک ملتی ہے وہاں مل جائیں گی نا. جی بک کا نام ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات نا, عبد المالک مجاہد اس کے رائٹر ہیں. اور یہ اسلامی کتب کا نیا انداز ہے, دارالسلام کی پبلیکیشن ہے نا. جی اور ٹائٹل ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات. اور آپ یقین کریے اس کو پڑھتے ہیں نا, کیونکہ اس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہم کے نہیں ہیں, بلکہ بعد میں لوگ جو ہمارے اسلاف گزرے نا ان کی زندگی میں بھی کوئی ان یوزول چیزیں ہوئی ہیں, تو وہ بھی اس کے اندر الحمدللہ واقعات کے ساتھ ایڈ کر دی گئی ہیں. تاکہ ہم اکثر کہتے ہیں نا وہ تو صحابہ تھے, وہ تو بہت زیادہ پہنچے ہوئے تھے, تو ہمارا کیا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ بعد کے لوگ بھی تو ہمارے لیے کیا ہیں, وہ بھی تو ہمارے لیے ایک طرح سے لائک گائیڈنس ہے نا, کہ وہ انہوں نے کس انداز سے دین کو ہمیں ہم تک پہنچایا نا. الحمدللہ. جی جی عبد المالک مجاہد کی بک ہے, بالکل آپ نے صحیح لکھا نا. چلیے اب آپ سب ریڈی ہیں اٹینڈنس کے لیے؟ جزاک اللہ آپ نے دے دیا. چلیے الحمد للہ بک بھی مل گئی. چلیے الحمد للہ آپ خود پڑھیے گا جو میں نے آج واقعہ پڑھ کے سنایا, پیج نمبر 151 پر یہ واقعہ نا. ٹھیک ہے پیج نمبر 151 پہ یہ واقعہ موجود ہے. آپ سب ریڈی ہیں اٹینڈنس کے لیے؟ شاباش. کتنے لوگ ہیں جو اٹینڈنس کے لیے ریڈی ہیں؟ جی الحمدللہ. چلیے میں آپ کے نام لوں گی, انشاءاللہ آپ نے لبیک ٹائپ کرنی ہے. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمہ فضل, میمونہ پروین, بشرا احمد, رابعہ اکبر, سبیحہ خان, شازیہ عامر, زرینہ محمد, سلمہ شیخ, نبیلہ عامر, فائقہ احمد, عثمہ طاہر, شمائلہ ارشد, یاسمین اقبال, زہرہ ترابی, شہناز فاطمہ, نرگس رحمان, تنویر جہاں, رخشندہ عزیز. جی ایک سیکنڈ مجھے دیجیے. نادیہ ناز, مسعودہ حسین, غزالہ شاہد, قرطلین اقبال, انیس فاطمہ, سائمہ خان, جویریت عزین, سیما قالد, ارم گلزار, عالیہ صابر, فرزانہ چودھری, نجمہ سلیم, سائمہ قرنی, عطیہ افس, صفورہ حمید, انیلا اطہر, قولا زیقو. جی الحمدللہ. جی میں نے آپ کو تسنیم خان, حاجرہ عظیم, ساجدہ بیگم, سید جلانی, عروبہ حمید, ناہدہ سلطانہ, مدیحہ خان, تریدہ بخش, صبا اسلام, زرینہ خاتون, این تلمنا جبار. ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ نے اپنی اٹینڈنس مارک کر دی ہوگی. الحمدللہ اگر کسی نے ابھی تک اپنی اٹینڈنس مارک نہیں کیا تو پلیز اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجیے. انشاءاللہ ہم اپنے گرامر سیشن کی طرف چلیں گے. آپ سب ریڈی ہیں گرامر کے سیشن کے لیے؟ अगर आप जी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टर बशरा अगर प्लीज आप रूम में तो अपना हैंड रेज कर दीजिए आपका ग्रामर का सेशन इंशाल्लाह चलिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसन अलजज़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك صدق؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما. أبي بي آواز آهستہ ہے یا ٹھیک ہے؟ ओके ठीक है हम पहले अपने होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क के बारे में ये कि मुझे इस दफ़ा बहुत ही कम होमवर्क मिले हैं। मेरे ख्याल है कोई चार या पांच लड़कियों ने अभी तक सबमिट किए हुए थे जब मैंने लास्ट टाइम देखे हैं एक दो घंटे पहले। तो आप लोग प्लीज़ होमवर्क के लिए थोड़े से ज़्यादा कोशिश करें कि उसको टाइम पे करें। और दूसरी बात ये कि जैसे टेस्ट भी जो हमारा लास्ट टाइम हुआ उसमें लड़कियों की अटेंडेंस बहुत कम थी। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कंसेप्ट क्लियर होने के बाद उसकी एप्लीकेशन के लिए अलग आपको मेहनत चाहिए। तो ये जैसे आप लोगों की तजवीद की क्लास होती है तो उसमें आपको एक चीज़ क्लियर होगी, हाँ ये कंसेप्ट है। जैसे मुदूद के लिए आपका कौन सी अलिफ मद है, कौन सी या मद है, वो फाइंड आउट करना एक अलग चीज़ है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके उस मिस्टेक को कम करना एक दूसरी कोशिश है। तो सेम इसी तरह ग्रामर के लिए भी आपने जो चीज़ पढ़ी है उसकी कंसेप्चुअली आपकी क्लियरेंस हो गई वो एक अलग मेहनत है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको फाइंड आउट करने आए कुरान मजीद में से वो सब चीज़ें, ये एक अलग कोशिश है आपकी। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि तस्दीक के ऊपर भी उतना ही आपको मेहनत करनी है जितनी कंसेप्ट के ऊपर करनी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान कंसेप्चुअली बिल्कुल 100% हुआ हुआ होता है लेकिन जब आप उसी चीज़ को सॉल्व करने जाते हैं, टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं तो आप कहते हैं ये तो मुझे तो सब कुछ समझ आया था, फिर ये क्यों मिस्टेक्स हुई हैं। तो ये इसी वजह से कि जब हम तस्दीक में अपनी मेहनत को पूरा नहीं करते, टाइम नहीं देते, तो फिर उसमें वीकनेस रह जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके चलें, क्लास अटेंड करें, उसको भी प्रॉपरली समझें और फिर उसके बाद तदबीक को भी अलग से टाइम दें। तो जैसे कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इस एक पूरे साल में आप जितना ग्रामर को टाइम देंगे उतनी आपकी समझ होगी फिर उसमें। तो ज़्यादा गुड़ डालेंगे तो और ज़्यादा मीठा रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा और इसके लिए अपना टाइम निकालें, कोशिश करें ताकि आप लोगों की इसमें इम्प्रूवमेंट हो और ज़्यादा, ठीक है। अब जैसे होमवर्क से रिलेटेड एक चीज़ के एक स्टूडेंट ने पूछा था या वही लता कि ये क्या हर्फ निदा है। तो इसमें जो हर्फ यूज़ हुआ है शुरू में या वो हर्फ निदा है और वही लता ये हमारे पास मुरक्कब इजाफी है। इसमें वैलता एक वर्ड है और आखिर में जो या है वो या मुतकल्लम है जिसको के कुछ चेंजिंग्स हुई हैं उसकी वजह से तो वो अलिफ मकसूरा की शक्ल में चली गई है। तो ये मुदौफ मुदौफ इलेह है या वैलता पूरा जो वर्ड है इसमें और या जो है वो हर्फ निदा है हमारे पास, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुफ़रद इस्म के जैसे आपको ढूंढने के लिए दिया था हर्फ निदा के साथ मुफ़रद इस्म, तो उन्होंने या कौमी यानी नीम के नीचे जब कसरा आपको मिले या कौमी इसको भी उन्होंने मुफ़रद इस्म के कैटेगरी के अंदर लेकर आए। तो जब आपको या कौमू मिलेगा तब वो मुफ़रद इस्म होगा लेकिन जब आपको या कौमी मिल रहा है नीम की कसरा के साथ तो ये कसरा आपको शो कर रही है कि यहाँ पर या मुतकल्लम थी जो कि हजफ हो गई है और इसकी ट्रांसलेशन करते हुए या आप अगर जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट को समझ रहे हैं, तो उस टाइम आपके माइंड में ये होगा कि इस व्याकरणी नीम की कसरा के साथ का जो मतलब है वो है कि ऐ मेरी कौम। इसमें मेरी का मफहूम पाया जाता है नीम की कसरा की वजह से, जो हमें ये शो करी है कि यहाँ पे या मुतकलम की जो कि हजफ हो गई है। ठीक, और इसी तरह या निसा अन्नबी, ये एक स्टूडेंट ने मुफरद कलेक्शन के अंदर लिखा था, तो ये हमारे पास मरतबे इजाफी है। और या अहलल किताब और या उलिल अलबाब, ये दो भी जो हमारे पास तरकीब है, ये किसी स्टूडेंट ने मुफरद मौरफ बिलाम मुफरद जो हमारे पास था उसके अंदर इन्होंने इसको लिखा। तो ये अहलल की अहलुल किताब है असल में मुरतब इजाफी, जब इसके साथ या ऐड हुआ तो या अहलल किताबी, ये हमारे पास हर्फ नदा मुरतब इजाफी के साथ। और इसी तरह उलिल अलबाब या उलिल अलबाब हमारे पास मुरतब इजाफी की कंस्ट्रक्शन में हर्फ नदा का इस्तेमाल हुआ है। ये हो गई हमारी होमवर्क से रिलेटेड बात। नहीं, कौनी जो है ये आपके पास मरतबे इजाफी है, इसमें याए मुतकल्लम हजफ हो गई है। अगर आपको, क्योंकि हमने मुफरद इस्म के बारे में ये देखा था कि अगर वो नकिरा है तब भी, अगर वो मारिफा है तब भी, वो मुफरद है तो वो मदमूम होगा, वो हालत रफ में होगा। तो आप अगर मुअर्रब बिल्लाम इस्म मुफरद है तब भी वो हालत रफ में है, और अगर वो नकिरा इस्म है या के साथ सिर्फ आ रहा है तो भी वो हालत रफ में होगा। अगर उसके कसरा आ रही है यानी लेटर के एंड में कसरा आ रही है, तो फिर आपको उसको थोड़ा सा और तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इसमें किसी और चीज़ का मफहूम पाया जा रहा है या है या मुतकल्लम है या कुछ भी। ठीक है, या हसरत, ये भी जो है असल में या हसरता, अगर तो या हसरता के एंड में राउंड ता है फिर वो मुफरद है, लेकिन अगर उसके एंड में भी अलिफ मकसूरा है तो फिर उसमें भी मुदाफ मुदाफ वाली मरतबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन होगी। अगर आप मुझे इसकी आया नंबर एग्जैक्टली सूरा के साथ बता दें तो मैं आपको फिर कुरान मजीद से देख के और कंसल्ट करके बता सकती हूँ। सूरा यासीन आया 30। ओके, ठीक है। और या अबती, इसको मैं भी सोच रही थी कि ये मुफरद है ये मुरकब है, तो मुझे लगता है कि ये मुरकब है, इसको भी मैं राइट कर लेती हूँ फिर इंशाल्लाह। ये सूरह यासीन वाला भी और या अबती वाला भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर दूंगी। हाँ जी, या कौमी जो है मुरकब इजाफी है। हाँ जी, अबती जो है वो ए मेरे अब्बा जानी इसका मीनिंग है, तो इसको मुझे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ज़्यादा कंफर्म करके बता दूंगी। और जैसे कि लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था या गुलैया, जो कि सूरह यूसुफ में आ रहा है, तो इसमें हमारे पास सूरह यूसुफ में दो तरह के इराब के साथ कहना चाहिए या हरकात की चेंजिंग में हमें ये मिलता है, या बुलैया भी है और या बनीया भी है, यानी बा की बम्मा के साथ भी और बा की फतहा के साथ भी हमें ये कंस्ट्रक्शन मिल रही है। तो इसमें जब या बुलैया कहा है, और नॉर्मली हमें ये जो हर्फ निदा है और इसके साथ जो तरकीब मिलती है, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को कहा था, तो उसमें आप ये देखें कि जब आपको या बुनैया मिलेगा तो नॉर्मली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया है उसने कि ऐ मेरे बेटे। इसमें जो बुनैया है ये इब्न की इस्म तस्गीर है, तस्वीर होता है किसी भी, जैसे सवीरा से इसका मिलता जुलता नाम है तस्वीर, कि इसम तस्वीर का एक वजन होता है। जैसे हमने इससे पहले भी कुछ औजान पढ़े हैं, तो इसम तस्वीर का वजन है कि उसमें बुनैया, बुशैरा, सुनैया, इस वजन के ऊपर आपको इस साउंड के साथ जब कोई वर्ड मिलेगा तो वो आपको बताएगा कि ये इसम तस्वीर है। और इसम तस्वीर में क्या होता है कि किसी भी जिसको आप बुला रहे होते हो उसको आपको छोटा करना मकसद होता है। तो अब जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, तो या बुनैया, ऐ मेरे, यानी ऐ मेरे बेटे। और इसमें छोटे होने का, क्योंकि वो भाइयों में छोटे थे और एक लाड प्यार का आपका स्टाइल होता है, तो उसमें आप इस चीज़ को थोड़े ज़्यादा, यानी प्यार के स्टाइल में आप बच्चे को बुला रहे हो तो आप उस तरीके के साथ बुलाते हो। तो ये इस तरकीब के अंदर, बुनैया की तरकीब में ये चीज़ आपको मिलेगी कि एक तो सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है कि बुनैया इब्न वाहिद है, और दूसरी बात ये कि इसम तस्वीर है इसमें कि छोटा करना मुराद है, कि छोटा, मेरे छोटे बेटे, इस तरह की तरकीब इसमें मीनिंग पाया जाता है। और अब जो हमारे पास दूसरा है बाकी फतहा के साथ, या बनी किया, उसमें आप देखें कि जैसे इब्नुन की जो हमारे पास जमा है वो हमें बनीन मिलती है, इब्नुन और बनीन, वाहिद और जमा। तो बनीन में जब बनीन हमारे पास मुदौक कंस्ट्रक्शन में आ रहा है तो उसमें हमने क्या करना है कि उसका हल्का इराब करना है। और हल्के हल्के इराब में हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हमारे पास जमा सालिम होती है तो हम या मुसन्ना होता है तो हम उसमें से एंड में से नून को हजफ कर देते हैं। तो इसी में यहाँ पर भी जो बनीन वर्ड है उसमें आखिर का जो नून है उसको हम गिरा देंगे मुदौक होने की वजह से। और फिर बनिया में जो आखिर में, क्योंकि जब हमारे पास दो याद इकट्ठी हो गई हैं तो हमने उसको तशदीद के साथ उसको जाहिर कर दिया है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली या है बनी या में, वो या मुतकल्लम है। तो इसमें यहाँ पर या बनिया में जो बनीन की बात हो रही है वो ज़्यादा बेटे हैं, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने तमाम बेटों के साथ बात की तब उन्होंने ऐसे कहा कि या बनिया। जैसे ये आपको मिलता है 67 आया में, और जहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों से कहा था कि एक दरवाजे से दाखिल ना होना जब तुम लोग मिस्र में दाखिल हो गए, बल्कि डिफरेंट दरवाज़ों से दाखिल होना, कि उनके अपने हिसाब से, कि नज़र से बचाने के लिए उन्होंने एक जो तदबीर थी वो इख्तियार की। तो इसके लिए उन्होंने अपने बेटों को, जब तमाम बेटों से बात की तो या बनिया की तरकीब को इस्तेमाल किया। और या बुनैया में एक बेटे की बात है, और बुनैया में जो तरकीब है वो मुदौक मुदौक इले की है। इसमें भी जो लास्ट में आपको बुनैया आखिरी जो या मिल रही है वो या मुतकल्लम की है, मेरे, ऐ मेरे बेटे। अब हमने जैसे लास्ट वीक का जो आखिर था हमारा वो हुआ था हमारा अस्माए मौसूला के ऊपर, जो माँ और मान, यही दो हमने उस दिन कवर किए थे। बाकी इस टॉपिक को इंशाल्लाह आज हम ख़त्म करेंगे, लेकिन कुछ अस्माए मौसूला माँ और मान दोनों ही जो के मीनिंग के लिए आते हैं, तो इनको हम थोड़ी सी तदबीर कर लेते हैं। इसकी सूरह हज आप ओपन कर लें जो कि 17 पारा में है, सूरह अंबिया के नेक्स्ट है। देखना पड़ेगा कि जब आपको याए मुतकल्लम मिल रही है तो वो किस कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन अभी तक हमने जितनी कंस्ट्रक्शंस की हैं यही के तौर पे आ रही है। तो इस तरह से मतलब एक रूल के तौर पे तो नहीं बात कही जा सकती। जब कोई तरकीब आपके सामने आएगी तभी आप उसका एनालिसिस करके कोई जवाब दे सकते हैं। ओके हाँ जी, ये जो ये हसरतन है इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। और या वैलत, या वैलता को मैंने अभी डिफाइन किया है कि या वैलता इसमें हरफ निदा है या, और वैलता आपके पास मुरकबे इजाफी कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो वैलता है ये आपके पास मुबाक है, और जो आखिर में आपको अलिफ मकसूरा मिल रही है वो असल में या की याए मुतकल्लिम जो कि चेंज हो गई है और अलिफ मकसूरा बन गई है। अब ये क्यों चेंज हुई है इसका भी आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन ये या मुतकल्लिम थी और ये चेंज होके अलिफ मकसूरा के उसमें चली गई है हालत में। और इसमें भी इसका मतलब यही है कि ए मेरी बर्बादी, या वैल जो है वो बर्बादी के लिए ही होता है, तो इस मीनिंग में इसको आप मेरी के साथ ही इसका तर्जुमा भी करेंगे। ठीक है। हाँ जी, या बुशरा जो है ये मुफरद कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें बुशरा के एंड में आपको मिलेगा अलिफ मकसूरा, तो उसकी वजह से हालत रफ, यानी हालत रफ में है बुशरा, लेकिन उसने बम्मा को कबूल नहीं किया क्योंकि वो अलिफ मकसूरा है, तो ये हमारे पास हालत रफ में है यहाँ पर। या वैलन, असल में ये जब इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं तो इनको मुझे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड है और आप लिख के मुझे एग्जैक्ट वर्ड दे सकें तो फिर मैं उसको ज़्यादा आसानी से बता सकती हूँ, वरना आप मुझे आया नंबर के साथ, सूरा के साथ बता दें तो इंशाल्लाह मैं उसको सर्च आउट करके फिर मैं उसको देख सकती हूँ। क्योंकि इसमें हमें बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता इराक के बारे में, हरकात की कुछ समझ नहीं आती, तो ये जो ये वैलन है इनको भी, और ये जो या लेतनी, ओके, या लेतनी जो है हमारे पास मुरकबे इजाफी कंस्ट्रक्शन है कि लेता है इसमें मुबाक, और नी जो है उसमें हमारे पास आ रही है या मुतकल्लम मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो या लेतनी ए मेरी हसरत बर्बादी, काश के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है लेता। ठीक है, ये जो सूरह यासीन 52 है इसको इंशाल्लाह फिर मैं देख के आपको बता सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे सही क्लियर नहीं मिला। ठीक है, आप लोगों ने सूरह हज को ओपन करना है 17th पारा में, सूरह अंबिया से नेक्स्ट है, इसको हम देखते हैं। आगे बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें असल में हमने मा मौसूला जो कि गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है इसको देखना है, और मन इसम मौसूल जो कि आकिल के लिए इस्तेमाल होता है इसके ऊपर थोड़ा सा हमने देखना है। फिर इंशाल्लाह जो अस्माए मौसूला का चार्ट है उससे फिर हम शुरू करेंगे अपने क्लासिंग को। ये हमने आया स्टार्ट से ही देखना है इसको। इसमें आप देखें कि आया नंबर 3 है जिसमें हमें पहला मन मिल रहा है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ। अब यहाँ देखें وَمِنَ النَّاسِ, मिन जो है ये हमारे पास मिन क्या है, وَمِنَ النَّاسِ में जो मिन है ये क्या है, क्योंकि इस्म मौसूल जो हमने किया है वो मन है। जी बिल्कुल, हर्फ जार है ये وَمِنَ النَّاسِ, और अब इसमें भी इसके बाद अन्नास के बाद जो आ रहा है मन, वो हमारे पास है इस्म मौसूल। मैं युजादिलु फिल्लाही, युजादिलु फिल्लाही जो भी अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं। अब आप देखें जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं वो इंसान है या जिन है, तो आकिल है मखलूक अल्लाह ताला की, तो इसके लिए फिर हमारे पास जो इस्म मौसूल पीछे आ रहा है वो मन है। हाँ जी बिल्कुल, ये आकिल के लिए मन इस्तेमाल हो रहा है, बगैर किसी इल्म के। ठीक, इसी तरह आप आया नंबर 4 में देखें, कुतिब अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फअन्नहु يضله ويهديه إلى عذاب السعير. اس میں بھی دیکھیں آپ کتب علیہ انہ من من جو ہے یہ ہمارے پاس عاقل کے لیے ہے اس سے موصول استعمال ہو رہا ہے تولاہ یعنی جو بھی پھر جائے تو اب آگے چونکہ پھرنے والے کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہمارے پاس جو پیچھے اسم موصول استعمال ہو رہا ہے وہ عاقل کے لیے ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ جملے کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتب علیہ انہو انہو میں بھی جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ جس کی طرف جا رہی ہے وہ عاقل ہے اور ومن الناس اور لوگوں میں سے یہ آیہ نمبر 3 کے شروع میں ومن الناس اور لوگوں میں سے جو اب یہاں پہ ہم جو چوز کریں گے وہ من اس لیے کریں گے کیونکہ لوگ عاقل ہیں اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں آگے آپ کے پاس آیہ نمبر 5 ہے اس میں ہمیں مل رہا ہے ایک آیہ کے مید میں ہے آلموسٹ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام یعنی اور ہم قرار دیتے ہیں رحموں کے اندر جس کو ہم چاہتے ہیں تو یہاں پہ ماں کے ماں جو ہے وہ اسم موصول استعمال ہو رہا ہے ہمارے پاس اور یہ غیر عاقل کے لیے ہے اور اسی آیہ میں آپ کو آگے مل رہا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ وَمِنْكُمْ مَنْ اور جو بھی کوئی مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ جو بھی کوئی اپنی بالکل ادھیڑ عمر تک پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر انسان کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے عاقل کی اس موضوع میں استعمال ہوا ہے ٹھیک اس کے بعد آیہ نمبر 7 میں دیکھیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اب يَبْعَثُ میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں انہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو اٹھا رہے ہیں وہ انسان ہے تو اس لیے من کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ اس کو دیکھنا چاہیے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ارحام کی وجہ سے یہ ما استعمال ہوا ہو تو اس کو میں کنفرم کروں گی پھر میں بتاؤں گی کہ کیونکہ بغیر علم کے بات نہیں کی جا سکتی انشاءاللہ اس کو میں سرچ آف کروں گی ٹھیک ہے اب ہم اپنے اسماء موصولہ دیکھ لیتے ہیں یہ اسماء موصولہ آپ کو لسان القرآن جو ہے اس میں 80 نمبر پیج پہ اس کا پورا چارٹ بنا ہوا مل جائے گا تو ہمارے پاس جو اسماء موصولہ ماں اور من کے علاوہ جو استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں وہ ہیں الذی اللذانی اللذین اور اللذین پھر اللتی اللتانی اللتین اللاتی اللائی یہ ہمارے پاس پورا ایک چارٹ ہے جو کہ اسماء موصولہ کا استعمال ہوتا ہے اس میں اب ہمارے پاس جو زیادہ تر اسماء موصولہ ہیں وہ مبنی ہیں यानी हालत रफ में होंगे, हालत जर में होंगे या हालत नसब में होंगे, वो अपनी हालत चेंज नहीं करेंगे। यानी उनके ऊपर हरकात से आप कोई भी जजमेंट नहीं लेके आ सकते। उनमें आपको मिलेगा अल्लादी, अल्लती, अल्लादीना और अल्लाती अल्लाई, यानी वाहिद और जमा के जो अस्माए मौसूला हैं वो तमाम के तमाम मबनी हैं। वो तीनों हालतों में एक ही तरह से आपको लिखे हुए नजर आएंगे कि उनके ऊपर किसी किस्म की एराब की कोई चेंजिंग नहीं होगी उनकी हालत बदलने से। लेकिन जो मुसन्ना के हमारे पास हैं अस्माए मौसूला, वो हमारे पास हालत नसब और हालत जर में अपनी शक्लें चेंज कर देते हैं। जैसे अल्लज़ानी हमारे पास हालत रफ है, जैसे आन की साउंड इसमें अलिफ नून आखिर में आ रहा है, और अल्लज़ैनी ये हमारे पास हालत नसब और हालत जर दोनों को शो कर रहा है। और इसी तरह जो मुअन्नस के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं अल्लतानी और अल्लतैनी, ये हमारे पास हालत रफ अल्लतान और अल्लतैनी जो है वो हालत नसब और हालत जर को शो। अब इसमें जो हमारे पास मुअन्नस के जो सीगे हैं अल्लतानी और अल्लतैनी, ये हमारे पास कुरान मजीद में नहीं इस्तेमाल होते। यानी कुरान में इनका कहीं पर भी इस्तेमाल हमें नहीं मिला। अल्लती अल्लाह ये आपके पास मुज़क्कर के तमाम अस्माए मौसूला हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, ये दोनों जो सेंटर में लिखे हैं ये मुसन्ना के हैं। अल्लज़ानी हालत रफ के लिए है और अल्लज़ैनी जो है ज़ा की फ़त्हा के साथ, ये आपके पास है हालत नसब और हालत जर का। अल्लज़ी और अल्लज़ीना ये तो बहुत कॉमन है कुरान मजीद में, हमें बड़े आराम से मिल जाते हैं। लेकिन जो तस्निया का सीगा है अल्लज़ैनी, वो हमें उसका इस्तेमाल मिलता है सूरत फुस्सिलत आया 29 में। रब्बना अरिनल्लज़ैनी अदल्लना, के अल्लाह हमें वो दो दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया। तो यहाँ पर जब अल्लाह ताला कुछ लोगों को जहन्नम में डालने लगेंगे तब वो कहेंगे कि हमें वो दो दिखा दे अल्लज़ैनी अदल्लना, कि जिन दो ने हमें गुमराह किया। तो यहाँ पर हमें तस्किया मुज़क्कर का जो सीगा है वो मिलता है अल्लज़ैनी। अब मुअन्नस के जो सीगे हैं उनमें हमारे पास आता है अल्लती, मैं सिर्फ वाहिद और जमा वाले लिखूंगी क्योंकि जो मुसन्ना के हैं अल्लतानी और अल्लतैनी, ये इन दोनों का इस्तेमाल हमें कुरान मजीद में नहीं मिलता। तो इसलिए ये मुअन्नस के सीगे हैं अस्माए मौसूला के, अल्लती, अल्लाती और अल्लाई। अब यहाँ पे आपको छोटा सा अलग डालना पड़ेगा लाम के ऊपर, ये जो अल्लती के बाद अल्लाती है इसके लाम पे, यानी जो सेकंड में आपको मिला लिखा हुआ मिल रहा है उसमें आपको लाम के ऊपर एक छोटा सा अलग डालना पड़ेगा अल्लाती के लिए और अल्लाई। अब आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह कुरान मजीद से भी इनकी मिसालें देखेंगे। जैसे हमने एक जुमले को जोड़ने के लिए एनएल पास का इस्तेमाल करना होता है। इसमें जैसे अगर आपको मैं एक सेंटेंस से मिसाल दूं कि वो लड़का जो तेरे पास है वो सच्चा है, इस कंस्ट्रक्शन को अगर हम चेंज करें अस्माए मौसूला के इस्तेमाल के साथ, तो इसमें आप देखें कि वो लड़का सच्चा है, यानी लड़का सच्चा है। इसमें हमारे पास एक सादा जुमला बन रहा है, जुमला इस्मिया, अल वलदु सादिकुन, मुब्तदा और खबर के साथ। अब आप देखें कि जो तेरे पास है ये हमने इसके दरमियान में फिक्स करना है, क्योंकि ये जुमले को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस को बीच में से जोड़ रहा है। तो अल वलदु के मुताबिकत में हमने अब लेकर आना है, जो इसम मौसूल है उसको लेकर आना है। तो चूंकि अलवलद मुजक्कर है और वाहिद है, इसलिए हम वाहिद मुजक्कर का ही इसम मौसूल इस्तेमाल करेंगे, जो कि अल्लवी है। अब जो को हमने ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास रह गया जो तेरे पास है, तेरे पास को इंदक, इंदका इसका हमारे पास मुरकब इजाफी कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें जो हमारे पास अब पूरा सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा कि अलवलदुल्लजी इंदका सादिकुन। इसमें देखें कि मुक्तदा है अलवलद, सादिकुन इस मुक्तदा की खबर है कि वलद जो है वो सच्चा है, और अल्लजी इंदक ये हमारे पास इस्म मौसूल और सिला है। अल्लजी जो है वो अस्माए मौसूला, जैसे आपने पूरा चार्ट उसका देख लिया, और इंदक का जो आपके पास आ रहा है मुरकबे इजाफी कंस्ट्रक्शन, ये इसका सिला है, यानी जो हमारे पास इस्म मौसूल आ रहा होता है और उसके बाद हमारे पास जो उसी से मिलती जुलती बात होती है उसको हम सिला कहते हैं। इस्म मौसूल से ही मिल रही होती है उसको हम सिला का नाम देते हैं। तो इसमें हमारे पास अलवलद मुब्तदा है, अल्लजी इस्म मौसूल है, इंदका सिला है, और सादिकुन जो है वो हमारे पास खबर है। ये जो सूरह फुसलत है इसका नाम मुझे नहीं पता, दूसरा क्या है, किसी और को पता है तो प्लीज टाइप कर दे। ओके, अब एक और कंस्ट्रक्शन है जो आप लोग इसको करने की कोशिश करें, और इसी तरीके से जुमला इस्मिया आप देखिए, मुब्तदा खबर और उसके बाद उसके बीच में जो इस्म मौसूल और सिला है उसको ऐड करें, ठीक है। वो दो लड़के जो दरवाजे पे हैं यतीम हैं। अब इसमें से अगर आप सिंपल जुमला इस्मिया को निकालें तो दो लड़के यतीम हैं। इस कंस्ट्रक्शन को पहले आप कंस्ट्रक्ट करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसम मौसूल और सिला की तरफ आएंगे। दो लड़के यतीम हैं, मुब्तदा और खबर के हिसाब से इसको बनाएं। हामीम सजदा जो है वो सूरह फुसलत है। ठीक है, दो लड़के यतीम है, इस कंस्ट्रक्शन को बिल्ड करें। हाँ जी, अलवलदानी यतीमानी, बिल्कुल मुब्तदा खबर हमारे पास आ गई, सॉरी, हाँ जी ठीक है, यतीमानी। इसमें ये अब इसमें आप देखें कि अब आपने इससे मौसूल और सिला को ऐड करना है, और वो क्या है, जो दरवाजे पे है, जो के लिए आपने जो इससे मौसूल अब चूज करना है वो मुजक्कर तस्निया का होगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास अलवलदान है, तो अलवलदान की मुताबिकत से हमने सिला उसके बिल्कुल इससे मौसूल उसके बिल्कुल नेक्स्ट में फिक्स करना है, और दरवाजे पर हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है वो जार मजरूर की है। इसको हमने मौसूल के बाद ऐड करना है। तो अब पूरा जुमला आप इसको बताएं, लिख के दिखाएं कि ये किस तरह से होगा कि दो लड़के जो दरवाजे पे हैं यतीम हैं। البلدان हाँ जी, الولدان اللذان على الباب، ये बैत नहीं होगा बल्कि बाब होगा। अलल बाबी यतीमान, ठीक है, ये पूरा हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, इसी तरह वो औरतें जो घर में हैं मोमिन है। यहाँ पे आप देखें कि जो घर में को छोड़ के हम अगर पूरी एक कंस्ट्रक्शन बनाएं तो औरतें मोमिन हैं, मुब्तदा और खबर, यानी अन्निसाउ मुमिनातुन। इसके बीच में अब हमने जो जो के लिए इस्म मौसूल इस्तेमाल करना है वो हमारे पास जमा और क्योंकि औरतें निसा है हमारे पास, तो इस तरह से हमने इसमें जमा का इस्म मौसूल इस्तेमाल करना है। अल्लाती अन्निसा उल्लाती, जो घर में है, फिल बैत, हमारे पास जार मजरूर की कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। अन्निसा उल्लाती फिल बैती मुमिनात। अब इसको हम कुरान मजीद से थोड़ा सा देख लेते हैं। सूरतुल बकरा को ओपन करें, इसमें से हम कुछ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। क्योंकि हमारे पास जो हालत मुअन्नस की जो जमा है वो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं, तो अल्लाती और अल्लाई ये कंस्ट्रक्शन हमें बहुत कम मिलती हैं। कुरान सूरतुल मुजादला में हमें इसकी मिसाल मिलती है अल्लाई के सीगे के साथ। हमें इसमें सूरतुल मुजादला में जो मुअन्नस जमा की है वो मिसाल हमें मिलती है, वरना जो जमा मुअन्नस की मिसालें हैं वो कुरान मजीद में बहुत कम मिलती हैं। जो आपको कॉमनली मिलेंगी वो अल्लदी और अल्लदीना है, ये आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगी। और जो अल्लदी की मिसाल है वो आपको वो भी मिल जाएगी, लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है जितनी अल्लदी और अल्लदीना है। और जैसे तस्मिया मुजक्कर भी इस्तेमाल हुआ है अल्लदैनी की, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी सूरह फुसिलत में है, तो लेकिन उसका इस्तेमाल भी तस्मिया का कम है। इसमें आप देखें आया नंबर 22 सूरतुल बकरा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं 21 में भी है इसकी मिसाल और 22 में भी है। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहन नास तुअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी, के ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की। तो अब यहाँ पर देखें कि जो हमने बात शुरू करनी है आगे वो अल्लाह ताला से रिलेटेड है, तो इसलिए अल्लज़ी इस्म मौसूल इस्तेमाल हुआ है क्योंकि रब एक है। तो यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ है अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यहाँ पे देखें अल्लादी की जो इसम मौसूल इस्तेमाल हुआ है वो रब की वजह से कि अल्लाह ताला वाहिद है इसलिए। और अल्लादी खलाकाकुम, अब यहाँ पे खलाकाकुम जो है वो सिला आ रहा है आपके पास कि इसम मौसूल अल्लादी और खलाकाकुम उसका सिला है। और वल्लदीना, अब यहाँ पे आप देखें वल्लदीना जो इसम मौसूल आया है वो खलाकाकुम की वजह से आया कि तमाम लोगों को उसने पैदा किया। वल्लदीना मिन कब्लिकुम, और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे। तो यहाँ पर चूंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है जिनकी अल्लाह ताला ने इंसानों की जिन इंसानों की तख्लीक की उन ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए नेक्स्ट में हमारे पास इस मौसूल मुजक्कर प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, वो लदीना मिन कबलिकुम। अब यहाँ पे मिन कबलिकुम जो है वो सिला आ गया है लअल्लकुम तत्तकून। फिर 22 आया के शुरू में देखें, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशन, जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया। तो यहाँ पर ये जो अल्लज़ी है ये अब रब की उस वताकत से एक सेंटेंस का जोड़ बन के शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जैसे वाहिद और जमा की मिसालें होगी मुजक्कर के हिसाब से। तो अगर हम मुअन्नस की मिसालें देखें तो आप 24 आया को देखें, वहाँ पे आपको मिलती है इसकी मिसाल, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ وَالَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ। कि यहाँ पर देखें कि अगर तुम जैसे इससे पिछली आयत में कुरान मजीद के जैसी कोई एक सूरत बनाने की मिसाल हो रही है कि तुम अगर कहते हो कि इसमें कोई शक है तुम लोगों को कि किसी इंसान की तरफ है, इंसान की तरफ से है, तो तुम भी ऐसी कोई सूरत लिख लो फिर। तो उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इन लम तफालू वलन तफालू, यानी अगर तुम ना कर सके और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। जो लम सीखा इस्तेमाल हो रहा है, वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये मुस्तकबिल में भी इसकी नफी कर दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, वलन तफालू, कि तुम मुस्तकबिल में भी जितने लोग आएंगे वो भी अगर इस सारी चीज के लिए कोशिश करते रहे तो वो कुरान जैसा कोई कलाम नहीं लिख सकते। तक नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल्हिजारा, तो तुम डरो उस आग से, अल्लती, अब यहाँ पे देखें अन्नार है और अन्नार के बाद इसम मौसूल आ रहा है, तो नार जैसा हमने देखा था कि सिमाई मुअन्नस में आता है, तो इसलिए उसके लिए आपको जो सीगा मिल रहा है वो अल्लती का मिल रहा है। वकूदुहा अन्नास वल्हिजारा, ये आपके पास सिला आ गया, तो जिसका ईंधन बनेंगे लोग भी और पत्थर भी, जो कि कुफार के लिए तैयार की गई है। फिर इसके बाद अगर आप देखें आया नंबर 40 को, तो वहां पे भी हमें एक मुअन्नस इस्म मौसूल के इस्तेमाल का इस्तेमाल मिल रहा है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। यहाँ पर आप देखें कि ऐ बनी इसराइल याद करो नियमती, मेरी नेमत को, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी नेमत को याद करो, अल्लती अनअमतु। अब यहाँ पे आप देखें जो सीगा इस्तेमाल हुआ है वो नियमा के हिसाब से हुआ है, और नियमतुन हमारे पास ताय मरबूता के साथ मुअन्नस इस्म है, तो इस वजह से यहाँ पर अल्लती का सीगा इस्तेमाल हुआ है मुअन्नस का, अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी उफी बिअहदीकुम। इसके बाद आपको 47 आया में सेम इसी तरीके से आपको मिलेगी, निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अब हमारे पास एक आप लोगों के पास मैसेज आया होगा आज ही व्हाट्सएप पे, जिसमें आप लोगों के पास दो पिक्चर्स आई हैं, तो जिसको कि हम इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा इस्म जो है वो अब कंप्लीट हो गया है, तो वो उस पैराग्राफ में आपको ज़्यादातर हदीसों से रिलेटेड या कुरान की आयात के साथ या आम जुमलों में आपको अस्मा ही मिलेंगे उस पूरे दो पैराग्राफ्स में, दो पिक्चर्स में, तो उनमें आपने अब एराब लगाने हैं, उसके ऊपर हरकात देनी है अपने पूरे इस्म के टॉपिक के को मद्देनजर रखते हुए, जो भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से। इसको इंशाल्लाह शुरू हम करेंगे अभी क्लास में, और होमवर्क होगा आपका बाकी कि आपने उसको कोशिश करके जिस भी तरीके के साथ आप लिख सकें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के शुरू में हम उसकी जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन, ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो आपने जिससे शुरू करना है, जिसको अभी हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप उसी को ओपन कर लें जो अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन से शुरू होगा। हाँ जी, ये जो अल्लती है ये नियमतों की वजह से है, नियमतुल मुदाफ मुदाफ इलैह में नियमती बन गया, या मुतकल्लम होगी उसने, और उसके बाद अल्लती का इस्तेमाल हुआ है नियमतों के मुताबिक से। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपने इस पैराग्राफ को। अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्हम्द है वो मुब्तदा है, और मुब्तदा हमने देखा था कि जब जुमले के शुरू में आती है तो वो नॉर्मली मारिफा होती है, और अगर हमने मुब्तदा को नकिरा लाना हो तो फिर हम उसको कैसे लेकर आते हैं? जब हमारा मकसद मुब्तदा को नकिरा लाना हो तो फिर हम उसको किस तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं? उस सूरत में हम क्या करते हैं कि जो खबर होती है उसको पहले ले आते हैं और मुब्तदा को आखिर में कर देते हैं। जैसे आपने देखा था, मुझे कोई कंस्ट्रक्शन याद नहीं आ रही, लेकिन इसकी मिसालें हमने उस वक्त बहुत सारी की थी कि जैसे जार मजरूर हमारे पास खबर मुकद्दम हो जाती है और जो मुब्तदा है वो हम मुअख्खर कर देते हैं, तो वो फिर नकिरा फॉर्म में आ जाता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो मुब्तदा है वो मारिफा होता है। अब इसमें अल्हम्द हमारे पास मुब्तदा है, और चूंकि इसके ऊपर कोई भी आमिल नहीं है, इसके पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर इफेक्ट करे, तो हम यहाँ पर इसको हालत रफ में ही लेकर आएंगे। अल्हम्दु दाल के ऊपर गम्मा देंगे हालत रफ के साथ, लिल्लाही यहाँ पे अब हमारे पास ये जार मजरूर की कंस्ट्रक्शन बन रही है, अल्लाह के लिए तमाम हम्द है, यहाँ पे ये कान मुकाम खबर है। रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन कौन सी कंस्ट्रक्शन है हमारे पास? हाँ जी, रब्बिल आलमीन इजाफी कंस्ट्रक्शन है। जार मजरूर में आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपके पास जो कंस्ट्रक्शन है वो हरूफ जार से स्टार्ट हो रही होगी, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो रब्बी है ये आपके पास हालत जर में क्यों है? इसलिए क्योंकि ये ली के इफेक्ट में है। यहाँ पे देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाही, अब ये जो अल्लाह है, अल्लाह ताला ही रब है, तो ये अल्लाह का ही एक दूसरा नाम कहने या दूसरा इस्म है जो यहाँ पर आया है रब, जो कि अल्लाह के इफेक्ट में है, यानी अल्लाह के यानी आई मीन सिर्फ लफ्ज़ों के एतबार से हम देख रहे हैं कि क्योंकि लाम का इफेक्ट अल्लाह के ऊपर हो रहा है और वो हालत जर में चला गया, इसीलिए रब भी हालत जर में है, अल्लाह और रब अल्लाह ताला ही रब है, इस वजह से लाम के ऊपर, लाम जो है वो दोनों के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, अल्लाह की हालत जर की वजह भी है और रब की हालत जर की वजह भी है। और आलमीन हमारे पास हालत जर में क्यों है? क्योंकि वो मुदाफ इलैह है। ठीक, इसके बाद आप देखें वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अब यहाँ पे हमारे पास वस्सलातु से एक चूंकि अतफ है तो हमारे पास एक न्यू सेंटेंस शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो असलात है उसके ऊपर पिछला कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये मुब्तदा है वस्सलातु वस्सलामु, सलात और सलाम ये दोनों जो है मुब्तदा है, आला रसूलिही अल्लाह ताला, यहाँ पे जो ही की दमीर है वो अल्लाह ताला की तरफ जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ही यहाँ पे जैसे पिछले सेंटेंस में अल्लाह ताला की बात हुई है तो इसलिए आला रसूलिही करीम, अल्लाह ताला के जो मुकर्रम रसूल हैं उनके ऊपर। अब यहाँ पे आप देखें कि आला रसूल जो है वो मुरक्कब जारी कंस्ट्रक्शन है, आला हर्फ जार और रसूल की हालत जर किस वजह से है? क्योंकि वो حرف جار کے ساتھ سن جاتے. اب رسول ہی جو ہے یہ آپ کے پاس مرکب اضافی ہے, اس کا رسول, یہ کنسٹرکشن آپ کے پاس مرکب اضافی ہے. اور الکریم جو ہے وہ صفہ آ رہی ہے رسول کی, اس وجہ سے الکریم بھی حالت رفعی ہے, سوری حالت جاریہ ہے. اس کی بھی جو میم ہے اس کو ہم کسرہ کے ساتھ لکھیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب نحن مسلمون, یہ ایک سیپریٹ سینٹینس ہے جو کہ مبتدا اور خبر ہے اور دونوں ہی حالت رفع میں ہیں کیونکہ ان کے اوپر کسی بھی پچھلے جملے کا افیکٹ نہیں ہوگا. نحن مسلمون, ہم مسلمان ہیں. اللہ ربنا وہو خالق کل شیء, ٹھیک ہے. اللہ ربنا, اللہ کیا ہے ہمارے پاس؟ بالکل اسم ہے جی, بالکل مبتدا آ رہا ہے ہمارے پاس. اللہ مبتدا اور ربنا, ربنا کی کیا پوزیشن ہے یہاں پہ؟ بالکل ربنا خبر, مرکب اضافی خبر ہے. وہوا خالق, وہوا یہاں پہ وہوا کیا ہے؟ جی واؤ عطف ہے اور ہوا ہاں جی اسم ضمیر مبتدا, بالکل ہوا ہمارے پاس مبتدا ہے. اور خالق, خالق کل شیء یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل خالق کل شیء یہ پوری ہمارے پاس خبر ہے. اور اس پوری خبر کو اگر ہم مرکبات میں دیکھیں تو یہ کس مرکب میں لائے کرے گی؟ خالق کل شیء, جی بالکل مرکب اضافی ہے. اس میں خالق ہمارے پاس مضاف ہے, کل مضاف الیہ ہے خالق کا, اور پھر مضاف بھی ہے کل, کیونکہ شیء ان کا جو مضاف ہے وہ کل ہے اور پھر شیء ان جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ خالق کل شیء, کل کی جو کسرہ ہے وہ مضاف الیہ کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ خالق کا مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں نیکسٹ سینٹینس, لا الہ الا ہوا, یہاں پہ یہ لا کیا ہے؟ بالکل لا نفی, لا نفی کے ساتھ ہم نے ایک اور لام کی لام کو یعنی دیکھا تھا کہ ایک تو لا نافیہ ہوتا ہے ہمارے پاس اور ایک اور لام بھی ہوتا ہے. نہیں لام تاکید نہیں ہے یہ بالکل بھی, جو لام تاکید ہوتا ہے وہ الف کے بغیر ہوتا ہے, وہ صرف لا ہوتا ہے فتحہ کے ساتھ. یہاں پہ آپ دیکھیں جو لا ہے یہ یہاں پر لا نفی جنس ہے کیونکہ الہ ہمارے پاس نکرہ ہے حالت رفع میں ہے, سوری حالت نصب میں ہے, تو یہ ہمارے پاس لا نفی جنس ہے کہ الہ کی تمام الہوں کی نفی ہوگی, چاہے وہ کسی نے انسانوں میں سے بنایا ہو, چاہے بتوں میں سے بنایا ہو, چاہے جانوروں میں سے بنایا ہو, چاہے کسی بھی چیز کا بنایا ہو کسی نے الہ, ان تمام الہوں کی نفی ہو گئی ہے اس لا نفی جنس سے. الا ہوا, الا جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسیپشن کے لیے ہم نے دیکھا تھا وہیں پہ جہاں پر ہم نے جملہ اسمیہ کو نفی بنانے کی تمام چیزیں پڑھی تھیں کہ ایکسیپشن کی ہے اس میں ہوا. اب یہاں پہ یہ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے, okay. اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے وہ آپ لوگ انشاءاللہ خود ٹرائی کریں گے. اور اس میں میں آپ کو صرف ایک ٹپ دے دوں کہ آپ اس پورے پیراگراف میں پہلے چھوٹی چیزوں سے کوشش کریں, جیسے آپ نے اسماء پڑھے ہیں ان کو جج کریں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو کنسٹرکشنز آپ نے پڑھی تھیں مرکبات کی ان کو آپ پہلے سالو کریں. آپ اگر ڈائریکٹ جملہ اسمیہ سے شروع کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے شاید اس سٹیپ کے اوپر مشکل ہو جائے کہ آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے کرافٹ نہ کر سکیں, लेकिन आप अगर छोटे लेवल से शुरू करेंगे, इस्म को पहले जज करें, फिर उसके बाद आप मुरक्कबात की तरफ आए, यानी एक वर्ड को पहले पूरे चार एंगल से देखें, वाहे जैसे मुजक्कर है, मोनस है, वाहे तस्निया जमा किस में ला कर है, फिर उसके बाद आप मुरक्कबात की उसके ऊपर जाएं कि कौन सा मुरक्कब आपके पास कहाँ कहाँ पे बन रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कौन कौन सा सेंटेंस है, जुमला इस्मिया है, इसमें इन्ना इस्तेमाल हो रहा है, या लाइन ऑफ इजेंस है, या कुछ भी है। तो इस तरीके के साथ आप अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें आसानी होगी। ठीक है, अगर कोई सवाल हो किसी का तो कर लें, फिर हम क्लास को बंद करते हैं। इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास से अपना फेल शुरू करना है, हमारा इसम जो है वो पूरा हो गया। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك। हाँ जी, आपको इराब पुट करने हैं इसके ऊपर, और इराब पुट करने से आपकी पूरी एक तरह से वो हो रही है ना, रिवीजन हो रही है आपके पूरे, जो भी आपने अस्मा को पढ़ा है, इसम का पूरा टॉपिक पढ़ा है, उसकी पूरी की रिवीजन हो रही है। नहीं, जो अल्लती है वो निर्मा की साइड पे है। आप देखें जो बनी इसराइल है वो मुजक्कर वो है, बनी जो है इसराइल के बेटे, वो आपके पास एक मुजक्कर उसमें मीनिंग आ रहा है। तो ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम देखी, यहाँ पर जो मेरी नेमत है उसकी तरफ, यहाँ पर उसकी मुनासिबत से अल्लती आया है। बनी इसराइल ट्राइब का नाम है, लेकिन अगर हम उसको पूरी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो वो आपके पास मदाफ मदाफ ले की कंस्ट्रक्शन बन रही है, इसराइल के बेटे। लेकिन यहाँ पर जो अल्लती है, हो सकता है कहीं पे बनी इसराइल इस्तेमाल हो मुअन्नस के उससे, लेकिन यहाँ पर जो अल्लती है वो नेमा ही की साइड पे जाएगा। ठीक है, होमवर्क जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि आपने इन दो जो आपको पिक्चर्स दी गई थी व्हाट्सएप पे, इसको हमने दो लाइनें अभी कर ली हैं, बाकी जो है वो आपने करनी है। ये आपका स्पीक का होमवर्क है। इसके बाद ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ و احسن الجزا سسٹر بشرا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج آپ نے کیا دیکھا بتائیے، میری آواز آ رہی ہے پہلے بتائیے، آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ جی ایکچولی میں نے مائک چینج کیا ہے، تو مجھے یہی ہو رہا ہے کہ شاید آواز کا تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو یہ آپ کے جوابات نہیں آتے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میری آواز نہیں جا رہی نا۔ ہاں تو آج آپ نے اسم موصولہ کو دیکھا، ٹھیک ہے نا، کیسے استعمال کیا جاتا ہے اسم موصولہ، واحد کے لیے کیا ہوتا ہے، تسمیہ کے لیے کیا ہوتا ہے، اور جمع کے لیے اور مونس کے لیے۔ الحمدللہ بیٹر ہے، الحمدللہ، چلے الحمدللہ۔ یہ بتائیے سمجھ آ گئی، اور جس طرح سے آپ کو اپلیکیشن کروا رہی تھی سسٹر بشرا، جی سورہ حج کے اندر بات سمجھ آ رہی تھی، جب آپ اپلیکیشن کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے آپ کی ٹیچر نے کیا کہا، جب آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا نا، تو جتنی آپ محنت ڈالیں گے اتنا ہی اس کا پھل اس کا میٹھا ہوگا، ہے نا۔ ہم سب کو میٹھے میٹھے فروٹ اچھے لگتے ہیں نا۔ اگر آپ کو چائے دے دی جائے بغیر شوگر کے، جو کہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے لوگ اڈکٹ ہوتے ہیں چائے کے حوالے سے نا، ٹی کے حوالے سے، اور اکثر لوگ تو شوگر لیتے ہی ہیں نا، اور اگر شوگر نہیں لیں تو وہ چائے کا ٹیسٹ ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ محنت نہ کریں نا کسی بھی سبجیکٹ میں، تو بالکل ویسے ہی ہے نا کہ پھیکا پھیکا، یعنی کچھ ہلکا ہلکا سا آیا ہوا، وہ اس طرح سے آپ کے اندر ایبزارب نہیں ہوتا، اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا نا۔ تو جتنی آپ منجدہ وجدہ، जितनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको वो चीज आ जाएगी। और जिस पर आपको आपकी टीचर ने कहा ना प्रैक्टिस करने के लिए गौर और फिक्र भी साथ साथ ना, जितना आप गौर और फिक्र करेंगे ना आपके पास ये जो हमारी जबान है ना, ये जो कुरान की जो जबान है अभी इतनी फसी और बलीग है कि हम सिर्फ ट्रांसलेशन से हमें मसला जब हमारे दिल पर ये मतलब ये समझ आता है, हमारे दिल के अंदर ये उतरता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन यकीन करिए जो हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, मैं और आप जैसे हमने रब्बुल आलमीन का ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप उसको ग्रामेटिकली उसको देखते हैं और देखने के बाद उस अंदाज से लाइक उसकी एनालिसिस करते हैं, तो फिर आपको उस वर्ड की उस जुमले की इंटेंसिटी समझ आती है ना। फिर आपको अंदाजा होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं शायद आप उस अंदाज से उस कलाम को समझ नहीं पाते जितना आपने उनकी जबान में लर्न करके उसके उस मैसेज को समझा ना। तो बहुत जरूरी है साथियों कि आप उस अंदाज से देखिए। कल ही मैं कोई जैसे प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं यही देख रही थी कि जब तक हम उसको इस अंदाज से नहीं पढ़ेंगे समझेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें इतनी अच्छी टीचर मिली है। तो कोशिश कीजिए जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको पूरा कीजिए और फिर आपको समझ आएगा। जब आप होमवर्क करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो फिर बात बनेगी ना, अदरवाइज जो है वो बात नहीं बन सकती ना। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी वो ग्रामर के हवाले से, तो जब उन्होंने सूरह जारियात करवा रहे थे ना, और सूरह जारियात में आपको पता है ना कि काफी ज्यादा लाम का इस्तेमाल हुआ है ना, जैसे इन्ना रब्बा का वो आती है ना कि सूरह जारियात में बस, तो उसमें जैसे लकनूत का वर्ड आता है ना, तो जिस अंदाज से वो जैसे इंटेंसिटी समझा रहे थे कि अगर कलाम के अंदर किस अंदाज से शिद्दत पैदा की जाती है, और हमारे पास जैसे आपको आपके टीचर ने भी बताया ना कि जुमला इस्मिया के अंदर वैसे तो अमूमन अगर देखा जाए तो मुब्तदा मारिफा होता है, बल्कि अक्सर मारिफा होता है ठीक है, और जिसे कहा जाए खबर नकीरा होती है, लेकिन कभी कभी इसको मारिफा भी तो लाया जाता है ना। तो कलाम के अंदर किस चीज को पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए कि कोई खबर उसको आप मारिफा कर दें और मारिफा जो कि चीज थी उसको नकीरा कर दें। फिर वो मजीद उस चीज को इलाबरेट कर रहे थे कि इन्ना जब आ जाता है तो मजीद कलाम के अंदर कितनी ज्यादा ताकीद आ जाती है, प्लस अगर फिर लकनूद लाम ऐड हो जाए तो मजीद ताकीद। और फिर वो मजीद बता रहे थे कि मैं अब इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, बस इसको महसूस किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कितनी शिद्दत से इस बात को मेंशन किया है कि इंसान अपने रब का कितना बड़ा नाशुक्र है ना। यानी हम उर्दू के वर्ड में तो कह सकते हैं ना कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, लेकिन जिसको जबान समझ आ रही होगी उसको उस जुमले की इंटेंसिटी समझ में आ रही होगी कि ये बात अल्लाह ताला ने कितनी शिद्दत से कही है। और ये हकीकत भी है ना साथियों, बताइए है कि नहीं ना, कि कितनी ज्यादा ये नाशुक्री तो है कि हमारे पास मौके हैं हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उसको अवेल नहीं करते सम टाइम ना। तो मैं ये सोची थी वाकई हमारे पास इंग्लिश में या उर्दू में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे हम उस चीज को एक्सप्लेन कर सकें कि यहाँ पे भी शिद्दत है, लाम लगा के भी शिद्दत है, दरमियान में सम टाइम हुआ या हुमा जमीर जमीर आपने जो मुनफसिल पढ़ी उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह शिद्दत पैदा की जाती है, एम्फेसिस पैदा किया जाता है, जोर पैदा किया जाता है। तो फिर हम कहाँ से ऐसा वर्ड उर्दू में लेकर आए जो आपको बात समझ आए कि इंसान के साथ ये सब कुछ होने वाला है ना। तो वाकई आई ओपनिंग है ये सब चीजें कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी कि अल्लाह ताला हमें बस देता रहे। लेकिन जब मैं सुन रही थी तो वाकई उस आयत के अंदर मुसलसल अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, व इन्नहु अला जालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बार बार अल्लाह ताला ला ला का वर्ड आ रहा है ना। अब ये देखिए ताकीद काफी थी इन्ना के जरिए से, इन्ना के जरिए तो इन्ना तो होता ही है ना, ताकि इन्ना अन्ना का अन्ना लई तला लाला आप पढ़ चुके हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मजीद ताकीद, फिर आप मुस्तकिल अल्लाह ताला मजीद लाम लगा लगा के बता रहे हैं कि तुम अंदाजा नहीं कर पा रहे हो कि इस कलाम की शिद्दत कितनी ज्यादा है ना। तो मैं यही सोच रही थी कि लास्ट में जो आई थी ना, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमाइज़िल्ला खबीर, अल्लाह ताला कितनी जिसे कहते हैं सब चीजों की खबर रखने वाले, अल्लाह ताला को तो सब पता है। लेकिन हम शायद इस बात को महसूस कर सकते हैं जिसको ग्रामर आ रही है ना, ये इन्ना भी है ला भी है, लेकिन हो सकता है कि जो लोग ग्रामर नहीं जानते तो वो बस इस उर्दू के ट्रांसलेशन से या इंग्लिश के ट्रांसलेशन से वो समझ जाएंगे कि हाँ अल्लाह जो है उनका रब जो है वो उस दिन बहुत ज्यादा बाखबर है, ठीक है, लेकिन उस चीज को महसूस ही किया जा सकता है जो उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा। मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ आप सबसे, कि आप इसको महसूस कीजिए, इसको लीजिए और फिर इस कलाम की खूबसूरती का, इस कलाम की बलागत का, इसकी फसाहत का अंदाजा कीजिए कि कितना प्यारा कलाम है, कितने कम लफ्जों में कितनी ज्यादा शदीद अंदाज से अल्लाह ताला ने हमको वो बात समझा दी घोड़ों की किताब से कि शायद हमें कभी समझ नहीं आती ना। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बामल बना दे। आप ये देखिए ना, घोड़े भी जब अपने मालिक के वफादार होते हैं, एक हमारा हाल क्या है कि हम अल्लाह ताला के बंदे होने के बावजूद उसके वफादार नहीं है ना। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको वफा का हक अदा करने वाला बना दे, और वो वही होगा जब हमें अल्लाह ताला का कलाम आसन अंदाज से समझ आएगा तो फिर हमारे अमल में भी वो चीज नजर आएगी ना इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला कोशिश कीजिए आप लोग जो भी आपको होमवर्क मिले ऑन टाइम कीजिए। वैसे भी देखिए मौसूला कितने आसान है ना, प्रैक्टिस करते जाएंगे और जैसे सिस्टर आपको करवाती है ना उसी तरह भी कीजिए। अगर आप चाहें तो वन वन वर्ड को एनालिसिस कीजिए। आपको पता ना एनालिसिस दो तरह से होती है, इंडिविजुअल बेसिस भी होती है, एक वर्ड को देख के और फिर पूरा सेंटेंस भी एनालिसिस किया जाता है ना। तो जो आपको आप जिस लेवल पर उस अंदाज से अपने आप को एनालिसिस भी कीजिए और साथ साथ मुस्तकिल एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, हफ्ते में 3 दिन 2 दिन मुझे आधा घंटा 20 मिनट्स निकाल लें प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह, ठीक है। और प्लीज अपने टेस्ट दीजिए, आपकी टीचर आपका वेट कर रही है। जब वो अनाउंस कर रही थी ना मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, हमारी क्लास में सिर्फ 5 लोगों ने अब तक टेस्ट उनको भेजा है ना। तो प्लीज अपने आप लोग प्लीज जो अब तक नहीं भेज सके किसी भी कमी कोताही की वजह से वो अल्लाह ताला से दुआ करें और रब्बी यस्सिर वला तुस्सिर, ठीक है। इंशाल्लाह अपने टेस्ट भेजिए जी। टेस्ट बीन सेंट जी, कौन से जो उन्होंने अनाउंस किया था कि क्या होमवर्क था या टेस्ट था, है ना, टेस्ट था या होमवर्क था, सॉरी शायद मैंने होमवर्क था, जजाकअल्लाह सिस्टर होमवर्क था, सॉरी सिस्टर मेमुना मैंने टेस्ट कह दिया, वो होमवर्क था, ठीक है। होमवर्क आपको दिया था और आप में से कुछ लोगों ने उनको होमवर्क सेंड किया, जब तक आप होमवर्क सेंड नहीं करेंगे तो उनको अंदाजा नहीं होगा ना कि आपका लेवल क्या है, किस हद तक आपको बात समझ आ रही है ना। आपका होमवर्क बताता है आपका लेवल ऑफ सक्सेस ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी जी जी, तो सिस्टर बुशरा को उन्होंने शुरू में अनाउंस किया था ना कि मेरे पास सिर्फ पूरी क्लास में से 4 या 5 होमवर्क आए ना, तो मेक श्योर अपना होमवर्क ऑन टाइम भी भेजिए। आपकी हफ्ते में एक ही तो क्लास होती है, इतनी लंबी चौड़ी तो क्लास होती भी नहीं है ना, तो मेक श्योर अपना टाइम पे, जिन बहनों ने अब तक नहीं भेजा मैं इनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपना होमवर्क काइंडली जल्द से जल्द उनको सेंड कर दीजिए ताकि अगर आपकी कोई गलती है तो इसकी इसलाह हो जाए और मजीद उनके लिए पढ़ाना भी आसान हो जाए ना। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो अल्लाह ताला आसान कर दे आपके लिए समझना, आमीन। इंशाल्लाह हम अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम आपने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम आपने क्या देखा था, एक नया टॉपिक देखा था कामयाबी जी, पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा था पहला जब आपने सुना था, अच्छा लगा था, चले इंशाल्लाह आगे से वही टॉपिक कंटिन्यूएशन है, आप इंशाल्लाह रेडी रहिए, इसके नोट्स लीजिए, बाद में मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। इंस्पायर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी के खेल अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नोट्स लीजिएगा इंशाल्लाह अच्छे से, फिर आपस में हम मिलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। उस्तादा जी से सुनते हैं, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, टॉपिक है कामयाबी और इसके अंदर इंशाल्लाह आगे देखेंगे उस्तादा जी हमें क्या बताती हैं। अस्सलाम, कोई बुक नहीं है, उस्तादा की कुछ छोटी सी सीरीज है, उसको इंशाल्लाह कुछ दिन के लिए करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम वापस बुखारी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير। کامیابی کے 10 نکات، آج ہم اس میں سے جس نقطے پہ بات کریں گے وہ ہے مثبت خود تحریکی۔ اب اردو میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنی بات سمجھ کوئی نہیں آتی، تو انگلش میں بولوں گی تو آپ کو بہت اپنا اپنا لگے گا۔ सेल्फ मोटिवेटेड, کچھ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے کام کرتے ہیں جب کوئی دوسرا ان کو موٹیویشن دے دیتا ہے، یا کبھی کبھی وہ کوئی درس سناتے ہیں تو موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہیں، یا رمضان آتا ہے تو ہوتے ہیں، یا حج یا عمرے سے آتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر موٹیویشن نہیں رہتا. بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، خود بھی میں پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں، کہتے ہیں یہ بتائیں کہ موٹیویشن قائم کیسے رہتا ہے، یا ہر وقت آپ انتھوسیسٹک کیسے دکھتے ہیں، اچھا آپ ہر وقت ایک ہی ٹون میں کیوں دکھتے ہیں، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم بہت گر جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم اس انسانی نفسیات کی روشنی میں یا سائیکولوجیکلی کچھ فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ خود کو کیسے موٹیویٹڈ رکھیں کسی بھی کام میں، ایون گھر کا کام کرنے میں. کچھ عورتوں کے گھر میں کام پڑا ہوتا ہے، دل نہیں کرتا کرنے کو. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ پڑا ہوا پتا بھی یہ کرنا ہے، مسلسل ٹن ٹن دماغ پہ چل رہی کوئی ایک کام، لیکن آپ نہیں کر رہے. پھر وہ کام پائل اپ ہوتا جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں مجھے ہیلپ چاہیے، پھر ہیلپ نہیں ملتی تو کچھ اور ہوتا ہے، پھر کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے وجہ سے ہی لگتا ہے کہ یہ کام کبھی نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر کچھ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی چند لفظ لکھے آپ کہتے ہیں خود تحریکی کا اپوزٹ کیا ہے، کیونکہ عرب لغت میں آتا ہے کہ چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانو. تو خود تحریکی کی ضد کیا ہے؟ خوف، مجبوری، گریز. خوف کیا ہے؟ فیئر. مجبوری کس چیز کا نام ہے؟ پرابلم، فورسڈ. آئی ایم فورس، سم ون از فورسنگ می، میں مجبور ہوں، ہاؤ کین آئی ٹیل یو. پھر گریز، ٹو اوائڈ. اور اگر آپ چاہتے ہیں خود تحریکی کا ہم معنی لفظ ڈھونڈے، کیونکہ بعض دفعہ مشکل لفظ نہیں سمجھ آتے نا، تو اس کا ہم معنی لفظ ہے تبدیلی کی خواہش. میرا خیال ہے یہ ایک سب سے خوبصورت لفظ ہے اس کو سمجھنے کے لیے. آپ اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی وجہ سے دوسروں کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اور کچھ نہیں تو جنت کو چینج کر کے اعلیٰ درجے کی جنت لینا چاہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ جس بندے میں تبدیلی کی خواہش نہیں ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا. لکھ کے رکھ دے اپنے پاس، آئی ول نیور چینج ایف آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج مائی سرکمسٹانسز. جہاں سے پیدا ہونے کے بعد جوانی میں لگے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں آج بھی، خوش ہیں، شکر ہے، اللہ دیر ہے، جنت میں جا کے سب کریں گے. کچھ لوگوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں ہر وقت تبدیلی، حرکت میں برکت. قرآن کہتا ہے سائحون و سائحات، حرکت کرنے والے، گردش کرنے والے، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. تو تبدیلی کی خواہش کا نام ہی ہو تحریکی ہے. اسی طرح ولولہ، ولولہ کس کو آپ کہتے ہیں؟ انگلش میں آپ اس کو کہیں تو آج کل ایک بہت ان ورڈ ہے، پیشن. آپ ولولے سے، جوش، جذبات، ایموشنلی. پھر اسی طرح لگن، لگن لگ گئی. لگن اصل میں پیشن ہے، اور ولولہ جو ہے نا یہ ایموشنلزم ہے، یا انسان کا کسی چیز کو کرنے کا ذوق رکھنا. اچھا، جو سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتے نا، ان کے عموماً جملے کیا ہوتے ہیں؟ یہ میری مجبوری تھی. پھر وہ کہتے ہیں اور میں پھر کیا کرتا، میں کیا کروں پھر. پھر کبھی کہتے ہیں میں اپنے حالات آپ کو بتا نہیں سکتی، میری یہ مجبوری، میری وہ، بس میں آپ کو کیسے بتاؤں، دل تو بہت چاہتا ہے یہ کرنے کو. یہ سمجھ لیجئے اگر جملے آپ کی میری زبان میں ہے نا، تو آئی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف سیلف موٹیویشن. اور جو سیلف موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں اس رنگ میں، ان کے عموماً جملے کیا آتے ہیں؟ ہاں میں کر سکتی ہوں، یس آئی وانٹ دس اینڈ آئی ول ڈو اٹ، میں چاہتی ہوں اور میں کر لوں گی. یعنی ناممکن چیز کو بھی وہ دیکھ کر کہتے ہیں یس آئی ول ڈو اٹ. چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، میں اس چیلنج کو قبول کرتی ہوں، میں اس بات کو قبول کروں گی. اور اگر آپ اس خوبی کو اپنے اندر لے آئیں گے نا، تو پھر آپ کو ایک سلوگن بنانا ہے، وہ سلوگن بھی لکھ لیں. کامیاب لوگ اپنی خواہش کو پیش نظر رکھتے ہیں، رکاوٹوں کو نہیں. کتنوں کو سمجھ آیا؟ خواہشیں ہماری ہوتی ہیں سب کے بیچ میں، لیکن ہمارا جو کلچر ہے نا، یہ بہت ساروں کی خواہشوں کو ذبح کر دیتا ہے رکاوٹوں کے بھئیے سے. اگر آپ اس سینس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو اپنی خواہشوں کو کبھی مرنے نہیں دینا. ویسے میری خواہش ہے کہ پوری دنیا میں قرآن پھیل جائے. ہاں بس کیا کروں، رکاوٹیں بڑی ہیں. اچھا خدا حافظ، مر گئی میری خواہش، میرے مرنے سے پہلے میری خواہشیں مر گئیں. آپ دیکھیں گے 90% لوگ ہمارے کلچر کے یہی کہتے ہیں، کرنے کو بہت دل چاہتا ہے ہو نہیں پا رہا. یہ ہے وہ ہے. تو آج سے آپ اگر اچھے کام کی خواہش کرتے نا, وہ بیریئرز کو بریجز بناتے ہیں. یہ جملہ لکھ لیں. سیلف موٹیویٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ بیریئرز رکاوٹوں کو بریجز یعنی پل بناتے ہیں. آپ اسی بیریئر کے اوپر چڑھ کے پہنچ جائے آگے. آپ اپنی مجبوری کو اپنی قوت بنائیں, اپنی بے بسی کو اپنی طاقت بنائیں. کامیاب لوگوں میں خواہش پائی جاتی ہے. تو لکھیے پھر, خود تحریکیت کا نقطۂ آغاز یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ خواہش ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج تک جو لوگ کچھ بڑا کام کر نہیں سکے نا زندگی میں, خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی. وہ یکسانیت سے مطمئن نہیں ہوتے. دوسری ان کی خوبی, اب یہ سمٹمز ہے جو آپ اپنے اندر بھی ڈھونڈیں گے انشاءاللہ, اور ہے تو گڈ, نہیں ہے تو پیدا کریں گے. یکسانیت سے مطمئن نہیں ہوتے, یعنی بس زندگی ایک ڈگر پہ چل رہی ہے, میں سیٹسفائیڈ ہوں, بس میں, میرا گھر, میرے بچے, روٹی کپڑا اور مکان. نہیں, پھر انہیں بہتری کے ساتھ تبدیلی پسند ہوتی ہے, چینج لانا چاہتے ہیں. بہتری بھی ہے چینج, مطلب گھر کی سیٹنگ پچھلے ایک سال سے ایک ہی طرح سے چل رہی ہے. استعمال کے دوران محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ چیزیں ادھر سے ادھر کر دی جائیں تو جگہ کھلی ہو جائے گی, یا خوبصورتی زیادہ آ جائے گی, یا چلے ذرا چینج لگے گی. تو وہ پھر سارا دن لگا کر فرنیچر کو ادھر سے ادھر موو کریں گے, کیونکہ ان کو تبدیلی پسند ہے. ایسا کامیاب آدمی کوئی نہیں جو جیتنا نہ چاہتا ہو. یہ بھی آپ لکھیں, اگر آپ جیتنا نہیں چاہتے نا تو کبھی سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوں گے, خود تحریکیت نہیں آئے گی. ہمارے چاروں طرف لا تعداد کامیاب افراد دکھائی دیتے ہیں, تاہم ہم میں سے بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس مقام پر ایسے ہی نہیں پہنچ گئے, بلکہ قدم قدم پر نہ جانے کتنی مشکلات اٹھانے کے بعد وہ یہاں پہنچے ہیں. ونسٹن چرچل ایک شخص تھا, اس کے بارے میں کون سوچتا ہے کہ وہ کبھی ایک نہایت غریب طالب علم تھا, بعد میں اللہ نے اس کو کتنا کچھ دیا. کامیاب لوگ خواہ کسی بھی حالت میں پیدا ہوئے ہوں, وہ اپنے لیے ایک مقام کے خواہاں ہوتے ہیں. یعنی چاہے وہ کسی موچی کے گھر پیدا ہوئے ہیں, کسی دھوبی کے گھر ہوئے ہیں, کسی غریب کے ہوئے ہیں, کسی امیر کے ہوئے ہیں, بس وہ اپنے لیے ایک مقام چاہتے ہیں. بہت سے لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی تحریک ایک ایسی چیز ہے جسے ہم جب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں, مگر ہر وہ کام جو ایک فرد کرتا ہے, چاہے وہ منفی نوعیت کا ہو یا مثبت نوعیت کا, شعوری ہو یا غیر شعوری, یعنی کانشیسلی ہو یا ان کانشیسلی, وہ دراصل تحریک ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھاتی ہوں تھوڑا سا آسان لفظوں میں. آپ چاہت کر رہے ہیں, خواہش کر رہے ہیں, اب آپ کرتے کچھ نہیں ہیں. خود تحریکیت چاہے اچھے کام کی ہو یا برے کی ہو, آپ کو حرکت کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں نا, لوگ غلط کام بھی تو کرتے ہیں تو ویسے ہی کر دیتے ہیں. کوئی چور چوری کر سکتا ہے اگر رات کو اٹھ کے گھر سے نہ نکلے, سردی میں نکل کے باہر نہ جائے, وہ چوری کرے گا؟ کتنا رسک ٹیکر ہوتا ہے چور, یا پک پاکٹ جو جیب کترے ہوتے ہیں, کسی لمحے بھی پکڑے جا سکتے ہیں. اور چور کے تو ہر وقت ہی خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے, لیکن وہ اچھا کام کریں یا برا کریں, ان کو کیا چیز چوری کرنے پہ مائل کرتی ہے؟ خود تحریکیت. بیٹھ رہنے والے کچھ نہیں کرتے. اسٹیگنینٹ واٹر میں اسمیل ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے, اور وہ ناپاک ہے, اسے وضو نہیں کر سکتے آپ. بہتا پانی چلتے جاؤ صاف, جہاں مرضی پی لو. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے, تو آپ باہر آئے, پھر آپ نے اپنی قمیض ہٹائی, ایسے اپنا بازو ننگا کیا, تو بارش کے اندر ہاتھ رکھ دیا تو اس کے اوپر پانی گرا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمل دیکھتے تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ نے کیا کیا, آگے تو کبھی نہیں کیا. تو آپ نے کیا کہا, بارش کی طرف سے کہا, یہ ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے آئی ہے, تو یہ بڑی پاک ہے, تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ میرے جسم پہ لگے. یہ صحیح حدیث ہے. اب آپ مجھے امیجینیشن میں لا کر بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پانی کو پاک کہنا, اور حدیث بھی اور قرآن میں بھی آتا ہے, مان مبارکن, برکت والا پانی ہے. بارش کیوں برکت والی ہے؟ کبھی کھڑی بارش دیکھی؟ بارش ہمیشہ گرتی, تیز ہلکی, موسلادھار, چھوٹی بڑی, تھنڈر اسٹارم تیز آئی, بارش میں کیا ہے؟ حرکت ہے. اس کے برعکس ایک جوہر آپ کے گھر کے پاس ہے, یا ایک گٹر کا پانی پڑا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ کھڑا. میرا اس سے زیادہ تو مثال نہیں لینی چاہیے کہ جن لوگوں کی زندگی میں حرکت نہیں ہے نا, تحریکیت نہیں, ایکٹیو نہیں ہے وہ, اور الرٹ نہیں ہے, تو وہ پھر گٹر ہی ہیں. और सब गंदगी उसी में लोग जाके डाल देते हैं। आपको कागज के टुकड़े भी उधर मिलेंगे और गनेरियों के छिलके भी वहीं मिलेंगे और लिफाफे भी वहीं मिलेंगे। हर शख्स दरअसल किसी न किसी हद तक अपना मुहर्रिक खुद होता है, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, जो भी दुनिया में कर रहे हैं, वो उसकी पहली वजह वो खुद होता है। वो ना करना चाहे कोई नहीं कर सकता। आज आप यहाँ आके क्यों बैठे हैं? आप एक सेकंड थॉट लेके आते हैं कि मुझे आज क्लास में नहीं जाना, आप कभी भी नहीं आते। मैं भी सेकंड थॉट ले आती ना, चली भी जाऊं ठीक है, ना भी चले जाऊं तो ठीक है, तो 99% फिर ये होता है कि बंदा वो काम नहीं करता। तो मैं और आप खुद हैं। तहरीक दरअसल एक ऐसी इस्तलाह है, इस्तलाह मीन टर्मिनोलॉजी है, जिसकी सही तारीफ की ही नहीं जा सकती। आप तहरीक को मकसद भी कह सकते हैं, अंदर से उभरता है। मकसद आपके अंदर से, देखिए आप वॉशरूम में जाने के लिए उठते हैं ना, आपके अंदर से एक हरकत उठती है, आपके पेट में दर्द होता है, फौरन उठ के वॉशरूम की तरफ जाते हैं। अगर ये अंदर से सिम्टम्स ना उठें या अंदर से सिग्नल्स ना आए, तो हम दिन में एक बार भी वॉशरूम में ना जाएं। बात समझिएगा, यानी जिस्म में ये हरकत उठती है कि हमें टॉयलेट यूज करना है, तो हम उठ के वॉशरूम में जाते हैं। अगर ये ना उठती तो हम कभी जाते ना, और बिस्तर पे फारिग हो जाते हैं बच्चे, आपको पता है। बस यही समझिए, अंदर से उठाएं। इसको कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। इसी की बुनियाद पे कोई काम करते हैं आप, इसी की बुनियाद पे आप किसी ख्याल को सोचेंगे, और इसी की बुनियाद पे आप कोई अमल करने पर आमादा होंगे। तो फिर आप एक जुमला लिखिए, बड़ा खूबसूरत है, कि फिर सेल्फ मोटिवेशन एक ताकत है जो आपको अमल पर आमादा करती है। लोग गोलियां खाते हैं ताकत की, सुनी हुई है, विटामिन डी खा लो, विटामिन सी खा लो, गोली खाए उठ के भागने लगे। जिस तरह कोई पिल्स खाने से, कोई ताकत की गोली या बीमारी से उठने की दवा खाने के बाद एकदम जोश आता है, अंदर हाइपरनेस होती है ना, इस तरह अंदर एक हरकत होती है और आप उठ के बैठते हैं, ये अंदर से उभरती है। ये जज्बा सीखा जा सकता है, ये पैदाइशी चीज नहीं है। कभी आपने देखा कुछ लोग बैठे होते हैं, एकदम बैठते हो, आइडिया, ये जो आइडिया होता है ना, चाहे बच्चों के जहन में आके जाके लोगों की मोटरसाइकिलों के हम हवा निकाल दें, आइडिया है ना, आइडिया, चलो जाके आम के दरख्त से आम तोड़ते हैं, आइडिया। ये जो आइडिया ना, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ द सेल्फ मोटिवेशन है। जिन दिमागों में आइडियाज नहीं उठते, उनके साथ मेहनत ना करें, बस वो जो कर रहे हैं ना उनसे कबूल कर लें। दुनिया में हमेशा याद रखें, लीडर्स थोड़े रहे, फॉलोअर्स ज्यादा रहे। उसकी वजह यह है, लीडर वो है जिसके अंदर जज्बे उभरते हैं, जिसमें जोश आता है, जिसके अंदर से आइडियाज आते हैं, ये ना कर ले, वो ना कर ले, ये ना कर ले। लेकिन लीडर को मैं चेंज करूं ना आज की मार्केटिंग के नाम से, तो मैनेजर। आपने पता नहीं इस चीज को कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, थोड़ा सा मुझे इसको पढ़ने का इत्तफाक हुआ है। बेस्ट मैनेजर वो है किसी भी कंपनी का, वो मस्जिद का ही एक टेक केयरर भी हो सकता है, कोई मैनेजमेंट पर्सन भी हो सकता है, जो अपने दिमाग में आइडियाज लाकर फिर उस काम को लेकर चलता है। वो लकीर का फकीर नहीं होता। बस लोग कहते हैं कि किसी इंसान को लालच दे दो, इनाम का शौक दे दो, चलो ये काम करेगा तो शोहरत दे होगी तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब लोग कहते हैं आप 20,000 करोन देकर किसी को हायर कर ले। इधर की मिसाल ले लेते हैं, हमारा भी एक स्कूल ही है ना, कोई आपको कहता है आपको एक मैनेजर चाहिए, आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन चाहिए, आप ऐसा करें बाहर दूसरे 15,000 देते हैं ना, आप इनको 20,000 देकर बुला लें। बिल्कुल बेकार दर्जे का वो शख्स होगा जो पैसे, इनाम, शोहरत, लालच की बुनियाद पर ऐसे काम करते हैं ना, वो बेकार होता है। वो घड़ी देखेगा मेरा टाइम क्या है, और वो एंड पे मंथ पैसे देखेगा, और जिधर उसको 21,000 मिले वो आपको ट्रप करेगा। ये मैंने इस वीक में अपने एक बहुत प्यारे साथियों, यानी हमारे जैसे इदारे होते हैं इसी तरह इदारों की तरह इदारों के भी ताल्लुकात होते हैं, तो किसी एक इदारे की मैंने कहानी सुनी है, मेरा दिल उस दिन से बैठा हुआ है। ओवरनाइट खड़े खड़े जो उनके मैनेजमेंट पर्सन है, उन्होंने इस्तीफा दे के स्कूल को ऐसे कर दिया जैसे वो हवा में लरज रहा। सोने पे सौगात जाते हुए क्योस भी डाल गए कि टीचर्स को कि आप भी जरा वॉकआउट कर जाए। और जिन्होंने मुझे बात सुनाई, मैंने उनको फिर याद दिलाया कि मैंने आपको कहा था जो फाउंडर्स होते हैं जिनका दर्द होता है ना, वही लेके सारी उम्र चलते हैं इदारों को। ये इम्पोर्ट नहीं किए जा सकते कि बाहर से आप एक इम्पोर्ट करें, इधर टीचर बिठाए बड़ा खूबसूरत सा प्रिंसिपल, वो आपका स्कूल ठीक कर दे, वो नहीं करेगा। वो कब करेगा? जब आप कुछ उसकी मदद करेंगे और दूसरे लम्हे वो उसको आपसे अच्छा जगह मिलेगी, वो चला जाएगा। ये सेल्फ मोटिवेशन बंदे को रुलाती है, रुल जाता है बंदा, मैं कहती हूँ खप जाता है बंदा। خون جلاتا ہے اس کو زندگی میں اور کوئی غم نہیں رہتا سوائے اس غم کے کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا تقاضا تو پورا کر دوں. یہ اندر لانے کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو, یہ ضرورت ہے. آپ دیکھ لیں زندگی میں, دیکھیں آپ بچپن سے لے کے جن لوگوں سے آج تک ملی ہیں, آپ کی مامیاں خالائیں پھوپھیاں چچائیاں, پھر جو بھی آپ کے دوستوں ساتھیوں میں جو آپ کے فیملی لائف, پھر شادی ہوئی تو سسرال, پھر آپ تھوڑا پڑھ گئے جاب پہ چلے گئے, آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ایک بندہ ساری زندگی 5,000 کی تنخواہ پہ گزار دیتا ہے؟ اس کا کام صرف یہ کہ اس نے صبح اٹھ کے آفس کھول کے صفائی کرنی ہے, پھر مالک کے آنے پہ سلیوٹ مارنا ہے, پھر اس کے لیے پانی رکھنا ہے, پھر اس نے کہنا جا چھوٹے پیپر کاپی کر کے لا, چاہ بنا کے لا, چائے لے آیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں 9 مہینے سے کم رکھا ہے؟ اس کی عقل نہیں, وہ مطمئن ہے, وہ کہتا ہے میں نے اس سے زیادہ کرنا نہیں, 5,000 ملتے ہیں کھینچ تینچ کے, کوئی 51-52 سو روپئے مہینے کا خرچہ چلتا ہے, 200 روپیہ کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے, میں خوش ہوں. آئیڈیا نہیں آتے. اور بس ایسی بھی کہانیاں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں, آئے تھے ملازم بن کے, مالکوں نے بندہ اعتماد کیا اور مالک چلے گئے رنگ رلیوں میں, تو ایک وقت آیا کہ ملازم آیا, سیکھا, اس کے اندر سکل تھی, آج اس کا کاروبار ان مالکوں سے بڑا. اور ایک وقت زندگی میں ایسا آیا کہ جن کے پاس وہ نوکر تھا وہ مالک ان کے پاس ملازم ہوئے. یہ میری آنکھوں دیکھی کہہ لے یا سنی ہوئی بات ہے, یعنی کلوز سرکٹ میں جانتی ہوں. ادھر سے حرکت پیدا کرے, یہ جو اندر حرکت دل, آپ دیکھیں ٹک ٹک ٹک, کبھی سوچے میرے مالک نے کوئی چیز حکمت کے بغیر نہیں پیدا کی دنیا میں. دل کی ہر دھڑکن آپ کو بتاتی ہے خود تحریکیت, خود تحریکی حرکت میں برکت. دل بند تو زندگی ختم, یہاں سے بھی دیکھ لیجیے مثال مل گئی. ہارٹ بیٹ بند کہتے ہیں آپ کا پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا, لے جائیے اس کو دفن کر دیں, مشینوں میں رکھنا ہے رکھ لے, زندہ لاش کی طرح کچھ دن دیکھنا ہے دیکھ لے, لیکن ہمارے حساب سے یہ ختم ہو گیا. حرکت میں برکت ہے. آپ یہ چھوٹے چھوٹے نام لالچ, آپ کہتے بچوں کی تعریف کر دیا کریں نا, بڑے خوش ہو جاتے ہیں. پھر اچھا ذرا آپ ان کو تھوڑا سا بڑھا دیں, کوئی ایک کبھی ان کو ایک کینڈی لا کے دے دیں, کوئی بسکٹ کا پیک دے دیں, پھر اگلی دفعہ خوشی سے آپ کا کام کریں گے. اٹس جسٹ این انسینٹو, کبھی کبھی ونس ا وائل, پہلے نہیں. یہ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے جو پیرنٹنگ اے ٹو زی میں بچوں کی تربیت میں, کہ بچے اچھا کام کریں تو آپ دیں چاکلیٹ, چاکلیٹ یا کھجور جو کھاتے ہیں دے دیں, لیکن پہلے سے نہ کرو کہ یہ کام کرو گے تو یہ دوں گا, وہ لالچ ہو جائے گا یہ انعام ہے. فرق سمجھے؟ پہلے امید اچھا یا میرا بیٹا گھر صاف کرو میں تمہیں یہ لے کے دوں گی, تو یہ تو پھر آپ ملازم کو بھی دے کے کرا لیں. بچے نے خود ہی کوئی کام کیا اور آپ نے پیار سے میں اس کو انایکسپیکٹڈلی کوئی ایسی چیز دے دی جو اس کی خواہش تھی, وہ انعام ہے. کبھی پھر دی کبھی نہ دی. تو یہ زندگی میں یاد رکھیے, یہ چیزیں نہیں, حرکت وہ ہے جو بندے کے اندر آتی ہے. اور پھر ایک اور چیز نوٹ کیجیے گا, اور وہ کیا ہے؟ یہ راز ہے, خود تحریکیت ایک راز ہے مضبوط اور دیر پا تبدیلی پیدا کرنے کا. کسی انسان کے اندر مضبوط اور دیر پا یعنی ایور لاسٹنگ چینج کب رہتی ہے؟ جب وہ تبدیلی کی طلب کو واقعی سمجھ لے اور اس پر کام بھی کرے. جب تک انعام کو حاصل کرنے کی خواہش نہ ہو اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. میں اس کو بھی اپنے ہی ایکسپیرینس سے سمجھتی ہوں. میں تو زندگی کے یقین کرے ہر دن میں لوگوں کے واقعات اور جو میرے پاس باتیں آتی ہیں ان کو دیکھ کر کتابوں سے زیادہ سیکھتی ہوں. کورس شروع ہوئے تھے, بڑے جوش میں آئے کلاسیں, پھر بیچ میں رمضان آ گیا, پھر رمضان میں چھٹیاں دے دی, دورہ قرآن آ گیا, پھر بچوں کی چھٹیاں ہیں تو چھٹیاں دے دیجئے, چھٹیاں دے دی ہیں. اب چھٹیوں کے بعد دوبارہ کلاس شروع کی ہے, 50 میں سے 30 لوگ ہیں, 20 کدھر گئے؟ کسی کا یہ مسئلہ آ گیا, کسی کا آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا. کیوں؟ تبدیلی دیر پا نہیں رہی. کتنوں نے دورہ قرآن میں نیتیں کی تھی, میرے پاس تو فارم بھی کہیں رکھے ہوتے ہیں. اتنے تھدے بن جاتے ہیں, کورس شروع کریں ہم آئیں گے, کورس شروع کرائیں ہم آئیں گے. یقین کریں کورس شروع ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگ آتے ہیں, لیکن مزے کی بات ہے ان میں سے 1 یا 2-4% ہوتے ہیں. ہر سال ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے, ایوری ایئر. ادھر بھی مجھے لگ رہا ہے اس سال ایسے ہی ہوگا, اللہ یہ کہ نئے آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ. اب جتنے لوگ ہمارے پاس سیرا کورس میں آ رہے ہیں اس میں سے زیادہ نے دورہ قرآن نہیں کیا ہوا, وہ نئے لوگ آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں روح القرآن شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ تبدیلی دیر پا کیوں نہیں ہوتی؟ خود تحریکیت نہیں, نے نیت کی ہے چل پڑے. اور ماشاءاللہ ایسے بھی لوگ ہیں, کورس شروع کیے کیے کیے, ایک دو اسٹوڈنٹ آئے اور میں کورس شروع کرا کے چلی گئی کہیں,
तो हर दिन रिपोर्ट पढ़ के मैं कहती थी अब अगले देखना किसी मैसेज में जो कोर्स जिनके जिम्मे लगा के आई हूँ ना उनका मैसेज आ जाना सॉरी आई लूज माई मोटिवेशन, मैंने आके दो लोगों से क्या पढ़ाना है पढ़ना है। और फिर मजे की बात है कि ये कोर्स हमने शुरू किया था 6 सितंबर अक्टूबर में और साथ ही सर्दियां आ गई छोटे दिन बर्फ सारी, तो मैं इधर नहीं थी उस वक्त कहीं की बात है। मेरे हर मैसेज में ये धड़का होता था कि अब ये जो कोर्स की जिम्मेदारी जिनको दी है ना उनका मैसेज आ जाना है कि खत्म करो जी ये 2 3 4 4 6 शुरू में 8 10 हैं फिर होते 4 3 जा सर्दियों में वो भी घर बैठ गए जब सर्दियां खत्म हुई, सर्दी तो खत्म हो गई लेकिन वो नहीं आए वापस, लेकिन मैंने नहीं देखा उनको वापस जाते हुए। और वो ऐसे भी हैं कि एक आध दफा ऐसा भी कि एक भी स्टूडेंट कोई नहीं आया, हालात ऐसे थे मौसम ऐसा था, तो मैंने कहा आप खुद लिखा के शुरू करते हैं, अगर एक भी स्टूडेंट नहीं आता तो आप अगले दिन जब स्टूडेंट आते हैं तो पूछ ले आप दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन अगर एक भी स्टूडेंट आता है तो आप अपना सिलेबस जारी रखें। ऐसे भी हैं लोग, ये कहाँ से आती है, ये पैदा करनी है। अब देखिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लम के बाद तन्हा रह गए थे। जब नबी सल्लम का इंतकाल हुआ, आजकल सीरत भी पढ़ रहे हैं तो उसके वाकयात मुझे बहुत याद आते रहते हैं सेशंस और दरसों के दौरान, तो मैं चाहती हूँ कि हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान की जिंदगी से फायदा उठाए ना, तो नबी सल्लम की जिंदगी में कुछ लोगों ने नबूवत के दावे शुरू कर दिए थे और फतेह मक्का के बाद ज्यादा आराबी, आराब समझते हैं बदवी लोग जो थे ना वो दीन में आए थे और उनके अंदर अकल समझ कम थी, बस वो पैसे के पीर थे, उनको लग गया कि अब गलबा हो गया तो अब इनका साथ ना दिया तो कबायली सिस्टम में मारे जाएंगे, लालची थे, उनको पढ़े ग्यार में पारे के शुरू में आता है कि अल्लाह कहते हैं उनको तावान लगता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। बस इस पॉइंट को बुनियाद बनाकर एक शख्स था अस्वद अंसी, उसने नबी सल्लम के बाद झूठी नबूवत का दावा किया और उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर गया, क्यों गया आपको पता है, उसने कहा मेरे दीन में ज़कात माफ है, नो चंदा नो डोनेशन नो फीस फ्री कोर्स, फौजों की फौजें उसके साथ लग गई। वो वक्त था जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि जो नबी की जिंदगी में एक तिनका भी अगर एक धागे बराबर चीज पे भी अगर ज़कात देता था और अब वो इनकार करेगा तो अबू बकर उसके साथ जिहाद करेंगे। अबू बकर तनहा रहने वाली कैफियत पे आ गए थे लेकिन अबू बकर नहीं हटे, वो क्यों हट गए, जिनके लिए कुरान कहता है कि अदखुलू नफी दीन अल्लाह अफवाजा, अल्लाह के नबी की आखिरी जिंदगी में अल्लाह ने अपने नबी को ये बाहर दिखाई, फौजों की फौजें आती थी, एक ट्रूप आया अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा आया अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आधे से ज्यादा पलट गए, तब्दीली देर पा नहीं आई, क्यों, इधर से हरकत नहीं थी अंदर नहीं थी। तो लिहाजा आप और मैं जो भी कामयाबी लेना चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, कोई कोर्स ले रहे हैं आप, हेल्प कर रहे हैं आप, वॉलंटियर कर रहे हैं आप, 5 वक्त की जमात से नमाज के आदी होना चाहते हैं आप, चाहते हैं कि मैंने गीबत छोड़नी है, जाती इज्तमाही हर तरह की चीजों में, तो जो चीज आपको इस पे उभारेगी ना, जो आपको इस पे जमाएगी, वो आपका खुद को खुद हरकत में रखना है। इसके अलावा ये तब्दीली ज्यादा दिन नहीं रहती। जिंदगी में कामयाब अफराद सिर्फ वही होते हैं जिनके अंदर जाती मुहरकाती कुव्वतें अच्छी तरह नशो नुमा पाती हैं, फिर वो अपने मकासद की सिम्मत की तरफ बढ़ते हैं, इसकी खूबी होती है उनमें, और जल्दी मंजिल पर चल जाते हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल में मंजिल से इधर उधर नहीं होते। तो खुलासा क्या है कि रास्ते में ख्वाह दुश्वारियां आए मुश्किल आए, अपने तय शुदा मकासद की सिम्मत एक रफ्तार से भरने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहें। आप कह सकते हैं कि ये जो जज्बे तहरीक है ना, ये जज्बाती सूरत है, इमोशनलिज्म है। लोग आपको इमोशनल कहेंगे, क्या हो गया कल है ठीक है, कल और हालात है तुम्हारे, अब और हालात हैं, आप कहते हैं हाँ मैं जज्बाती हूँ, यानी लिखें खुद तहरीकियत में जज्बात का बड़ा गहरा दखल है और हर चीज में आपको एक जोश दिख रहा है। जिंदगी में मुहरकाती जज्बे क्या हैं, भूख प्यास बका इंतकाम मोहब्बत वगैरह, ये सब जज्बाती मरले। देखिए आप बिस्तर पे सो रहे थे, फिर भूख लगी, इतनी लगी कि आखिर आप बिस्तर से निकल के उठेंगे ना, जरा देखो फ्रिज में क्या है, ये भूख एक मुहर्रिक है, हरकत दिलाता है। बैठे थे एकदम गला छिला खुल खुश्क, आप यहां से हो सकता है 1 घंटा पहले से सोच रहे हैं अच्छा मैं उठ के जरा बाहर एक चक्कर लगा, अब नहीं लगा रहे, पर एक ऐसी गले में प्यास उठी कि अखीर आप पानी लेने के बहाने उठ गए। आप कहीं जा रहे हैं बैठे में, आपको एकदम खतरा, कोई आपके पीछे लगा हुआ चोर है, आप अपनी बका के लिए भागेंगे, तो बका भूख प्यास बका बाकी रखना, यानी मैंने आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ सिक्योर। इसी तरह चौथी चीज इंतकाम रिवेंज, ये जो मैंने कहानी आपको भी सुनाई है, तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने रिजाइन किया है वो रिवेंज में आके स्कूल को इतना नुकसान दे के गई है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अंदर में ईमान दीन नहीं था। वो एक जॉब के लिए उस स्कूल के प्रिंसिपल बने थे। अल्लाह ने उसी बस जो भी हालात है, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं देती, लेकिन इंतकाम भी बंदे को फिर कहते हैं, मर जाएंगे तो मार भी देंगे, कटेंगे तो काट भी देंगे। पांचवा मुहरक मोहब्बत, ये पांच चीजों पे आप सोचिएगा। इंशाल्लाह हम आगे अगले सेशन में इन्हीं में से बात करेंगे। भूख प्यास बका यानी अपने आप को बाकी रखना, मरने वाले होते हैं तो इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है भागने की। एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक लड़का एक लड़की से कुछ उसका ताल्लुक था, खैर जब तक उसको उसकी ख्वाहिश के मुताबिक रखा, जब उसको लगा कि ये अब मेरे लिए खतरा बन रही है तो उसको मरने की नियत कर दी, इरादा कर दिया, दूर कहीं ले गया, वहां जाके उसने सोचा इसको मारेंगे। अब लड़की सोच रही थी ये मेरे से मोहब्बत करता है, ये मुझे ऐसे ही लेके जा रहा है घूमने फिरने। लड़के को पता था कि मैंने इसको मारना है, लड़की मरने के लिए तैयार नहीं थी, लड़के को पता था। वहां जाके उसने इस पे आग लगाई, वो आग लगी हुई लड़की जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि ये मुझे मारेगा, वो वहां से भागी भागी, इतना भाग भाग के कहां से उसमें एनर्जी आ गई कि वो एक ऐसे मुकाम पे आके गिरी जहां लोग मौजूद थे। इसके बरक्स वो लड़का जो उसको मारने के लिए गया था वो इतना नहीं चल सका, वो आधा रास्ता ही देख के वही रुक गया कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। किस चीज ने उस लड़की को भगाया? एक मिसाल ये सिर्फ कहानी दी है, बका का जज्बा। आप चल नहीं सकते, अल्लाह ना करे आपको कोई खतरा लग जाए, आप इतना भागेंगे कि आप कहेंगे मेरी टांगों में इतनी ताकत कैसे आ गई। इसी तरह इंतकाम बंदे को अंधा कर देता है कि मैं फिर करके दिखाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी इसको भी मार दूंगी। और बाज दफा मोहब्बत, तो हरकत पैदा करें पॉजिटिव, नेगेटिव हरकतें भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। कोई बात जो आज की है बातें उनमें से पूछ लें, क्योंकि टाइम हमारा पूरा हो गया। इसी में क्या सीखा, एक जब जुमले या एक लफ्ज में बोलते रहें।
जी उस्ताद जी, मैं सुनते ही सोच रही थी कि हमें तो हरकत में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे पीछे तो शैतान भी लगा हुआ है।
शाबाश, शैतान ने तो कसमें खाई थी कि मैं इनके आगे से पीछे से दाएं से बाएं से आऊंगा। और मैं आपको फिर इनकी बात को सदका जरिया बना दूं, ये भी नोट कर ले, शैतान क्या है, खुद तहरीकियत है, वो भी सोया होता, लेकिन उसने जो कहा था उसको वो रिवेंज दिला रहा है कि मैंने आदम और उसके बच्चों को आग में लेके जाना है। तो जब उसको हमें आग में डालने का जज्बा जिंदा रख रहा है, वो तो हर मुश्किल काम में भी पड़ जाता है, तो हमें अपने आप को बचाने का, अपनी बका का जज्बा जन्नत में ले जाने का वाले काम ना करने दे। देखिए ये तरबियत के नुक्ते होते हैं, बस दफा आप अपने साथियों को करके दिखाते हैं जो आप उनको कह रहे होते हैं, और अगर आप हर बात को अगलों की नजरों पर देखने लग जाए तो कभी दुनिया में कोई काम बेहतरीन के दर्जे पे तो नहीं पहुंचेगा ना। जी आप,
मैंने ये सीखा है कि जो कामयाब लोग होते हैं अपनी ख्वाहिश देखते हैं तो काम हो गए।
शाबाश, मुझे भी ये जुमला बहुत अच्छा लगा आज के सेशन का। ख्वाहिश है मेरी, मैंने करना है, यस। आप देखिए जिद होती नहीं बच्चों में, बाद लोग जिद्दी हैं, लाडले हैं, ख्वाहिश है, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, लेनी है आइसक्रीम लेनी है इसी वक्त लेनी है, जाए लेकर आए, तो वो बाहर तो नेगेटिव ख्वाहिश है ना, लेकिन मनवा लिया उन्होंने, बाप मजबूर हो गया। तो क्या मैं और आप नहीं वक्त और रिवाज और अपने मुआशरे के और अपने घर वालों के आगे, हाँ मेरी ख्वाहिश है, यस आई वॉन्ट इट, हाँ जी यस यू वॉन्ट टू गो, यस आई वॉन्ट टू गो, मुझे जाना है, आपको जाना है, नहीं जाना है, मुझे जाना है, आप मेरी ख्वाहिश के लिए साथ चले, मान जाएंगे जी। बका की जंग है असल में। और आप देखिए हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है ना कामयाब होने के लिए, इसके बाद अबदी इंजाम तो हम सबका सामने ही है।
रुकावटों को पुल बनाना है,
चाबर बैरियर्स को ब्रिजेस यानी रुकावटों को पुल बनाना है।
अपनी मजबूरियों को आगे नहीं लेके आना, ये सोचना है कि मतलब हमने जो ख्वाहिश सोची है रखी है उसको हमने पूरा करना है हर हाल में।
बिल्कुल, पर मैं आपको एक सच बताऊं, बहुत बड़ा राज है जो बहुत बड़े बड़ों को भी नहीं पता, ये जिसको आप इनर पीस कहते हैं ना, खुश रहना मुतमिन, वो इस ख्वाहिश के पूरे होने का नाम है जो हमने की होती है। और ये जो आज के दौर के मारूफ नाम है ना, डिप्रेशन स्ट्रेस दुखी रहना, ये वो हमारी ख्वाहिशों का मकबरा होता है जो अंदर ही टूटती बनती है, फिर अखीर हम यही कह देते हैं ऐसे चलो जन्नत में जाके कुछ कर लेंगे, वहां तो कुछ करना ही नहीं है, वहां तो ख्वाहिशें भी खत्म हो जानी है। तो लिहाजा ये जो बंदा अपनी जिंदगी, और फिर इसमें खुद एतमादी कितनी आती है, आई वॉन्ट एंड आई गेट, मैंने चाहा और मैंने पा लिया, तो आप अपनी घुटन की जिंदगी से निकले। जी नेक्स्ट,
मैंने रशीद जी को बोला था कि आज मैं जल्दी चली जाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो जब मैं जाने की तो सारे जगह थोड़ा सा मोटिवेट किया कि ये छोटा सा एक लेसन है तो अगर आप सुन लेंगे तो आपके लिए अच्छा है लेकिन आप पे है। तो उसी वक्त मैंने एक पल में फैसला किया क्योंकि मैंने कहा घर पे काम तो है लेकिन ये कुछ सीख लूंगी तो फायदा होगा, घर पे फिर से हेल्प करते हुए।
और उस वक्त यहाँ से जाती आपकी बस में सो जाती, अब नीचे 15 मिनट खड़ी रहती, तो अब आपको जोश मिला, आप सब दुआ करें कि घर के काम में बरकत वक्त में आ जाए और मेहमान भी खुश रहे। मेहमान जितने खुश रहते हैं बस उतने ही रहेंगे, तो वो जो कर सकती कर ली, बता दीजिएगा नहीं कर सकती। जी वो कहते हैं ना बिल्कुल इसी जो आज टॉपिक है ना, इस पे आप एक कमेंट भी लिख लें कि जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ये जौके यकीन जो है ना, ये असल में खुद तहरीकियत है।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आपने अपनी ख्वाहिशों को अपने से पहले नहीं बदलना।
और ख्वाहिशों का रुख सही रखें। देखिए इस्लाम या तालीम कुरान की जो होती है ना, ये हमारी ख्वाहिशों का रुख सीधा रखती है। हर चीज जो है ना हमारे अंदर वो बुरी नहीं है। एक मिसाल है कि एक इंसान के अंदर ख्वाहिश है वो बड़ा बने, मिसाल है शोहरत फेमस होना, आप इस अपनी ख्वाहिश को चैनलाइज करें, आप अच्छे कामों में बड़े बने। हाँ कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा काम करते हैं इमाम काबा तो उनका नाम है, कोई बुरी बात नहीं है। समझ आइए, कुरान और सुन्नत और इल्म से जुड़ के आपकी ख्वाहिशें सीधी हो जाती हैं, तो बस इन ख्वाहिशों को सीधा करें, फिर आप पूरा एटी चोटी का जुल कर। लोग कहें ये स्टबन है, ये नहीं मानेंगे, कहते मैं नहीं मानूंगी, ये पत्थर है, ये नहीं हट रहा अपने रस्ते, मैं नहीं हटूंगी, मेरी मर्जी, क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिशें पूरी करी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ठीक है, मैंने कुरान सीखना है, मैंने अमल करना है, मैंने जन्नत में जाना है, ये मेरी ख्वाहिश है, तो यकीन से जा, इसी का नाम फर्मनेस है। जजाक अल्लाह खैर, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آواز آ رہی ہے میری؟ الحمد لله، كيسا لگا آج کل ایسا نا آپ کو؟ لگتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ اس طرح کی چیزیں کہ لوگوں کو جسے کہا جائے موٹیویشن دلاتے تھے نا کہ ہٹ اٹھو کرو بیماری کی حالت میں کہ اٹھو کام کرو یہ کرو، واقعی یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے نا، کہ اگر آپ اپنے آپ کو جس حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہیں کہ آپ لیزی بن جائیں، کاہل بن جائیں، سست بن جائیں، تو آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں نا، اور جہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پریشانیوں میں بھی، کمزوریوں میں بھی، چاہے جس طرح کی پریشانی کمزوری آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ اگر آپ جسے کہا جائے ایکٹیو رہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی جو رکاوٹیں ان کو پیچھے ڈال دیتا ہے نا، الحمدللہ۔ کیونکہ اکثر لوگ دیکھیں نا کیا بہانہ کرتے ہیں، جب سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتے تو کیا بہانہ کرتے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، کیا کہتے ہیں میری تو ابھی بہت ساری مجبوریاں ہیں، مجھے تو شوہر اجازت نہیں دیتے، میرے تو گھر کے کام اتنے، میں تو کمبائن فیملی میں رہتی ہوں نا، کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں نا، وجہ کیا ہوتی ہے، وجہ کیا لگتی ہے کہ کیوں اتنی مجبوریاں ایکسکیوز دیتے ہیں؟ قرآن آپ کو پتہ نا اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک میں کیا آتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کتنی پیاری آیت ہے نا، کہ انسان نفس اپنے نفس پر خود ہی چیک رکھنے والا ہے نا، خود ہی دیکھنے والا ہے، ولو القی معاذیرہ، چاہے کتنی ایکسکیوز پیش کرے نا، صحیح بات ہے نا، تو ہم کتنی ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کوئی چیز کو نہ سیکھنے کے، لیکن ہم خود جانتے ہیں، ہمارا نفس خود جانتا ہے کہ ہم یہ معذرتیں پیش کر رہے ہیں۔ عام روٹین میں بھی دیکھیے، بچوں کو کوئی کام کے لیے کہو، بچے کام نہیں کرتے تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ایکسکیوز ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے کہ نہیں ایکچولی یہ ہو گیا تھا تو میں نے یہ کام نہیں کیا نا۔ جی، نفس کی شرارت، اگزیکٹلی۔ تو کرنا کیا ہے پورا لیکچر سننے کے بعد، کہ آپ کو سیلف موٹیویشن چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیلف موٹیویٹڈ کیٹیگری میں ہیں یا ڈی سیلف موٹیویٹڈ کیٹیگری میں، شیطان پوس دم بیک، اگزیکٹلی۔ آپ یہ دیکھیں نا استاذہ جی نے آپ کو کیا کہا تھا، دیکھیں ہم سب الحمدللہ ایک ایگزامینیشن روم میں نا، اور ہر کوئی روٹین کی عبادت کر رہا ہے، مطلب ہر کوئی کا مطلب ہے جتنا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وہ روٹین کی نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی ادا کر رہے ہیں، جو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جسے کہا جائے اس پر عمل کر رہے ہیں نا، الحمدللہ۔ अब आप सबको पता है कि हर इंसान के अंदर कमजोरियां है ना. हो सकता है आपकी नमाज बहुत अच्छी हो लेकिन आपका दिल जिसे कहा जाए खर्च करने में इतना अच्छा नहीं हो ना. तो जो आपकी जिसे कहा जाए वीकनेस होती है शैतान, तो वहीं से आपको जिसे कहा जाए अटैक करता है ना. अगर आपकी वीकनेस ये है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा बहुत करती हैं, आपको बहुत ज्यादा बातों पे मूड ऑफ कर लेती हैं, या तो फिर क्या है ना कि आपको अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों से मिलवाते हैं जो आपका मूड खराब करते हैं ना. और फिर उसकी इसलाह किस अंदाज से होती है कि आपको आपकी गलती पता चलती है कि आपके अंदर अल्लाह ताला चाहते हैं ना कि हम अल्लाह ताला के पास जब पहुंचे तो बहुत हमारा दिल कलबे सलीम हो. अब हमें हमारी गलतियां कौन बताएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी अब हमारी गलतियां या कमियां क्या हैं. इसके बावजूद हमें समझ नहीं आता ना कि हम समझते कि नहीं, लेकिन जब दूसरा बताता है कि आप तेज बोलती हैं या आप बहुत ऊंचा बोलती हैं या आपका तो बहुत जल्दी मूड खराब हो जाता है, तो हम इतने एक्सक्यूज देने लगते हैं कि नहीं वो तो बच्चे ही इतना तंग करते हैं तो मैं क्या करूं, चीखना भी पड़ता है चिल्लाना भी पड़ता है ना. और हमें पता होता है कि ये हमारी कमजोरी है और इसी कमजोरी के जरिए से शैतान हम पर अटैक करता है, और हम माजरतें पेश कर करके अपनी उस कमजोरी को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते. ऐसा ही होता है ना, बताइए आप सब बताइए. हम नहीं निकाल पाते और इसी वजह से अपना एनालिसिस नहीं कर पाते और फिर सारी जिंदगी वो कमी कोताही हमारे अंदर रह जाती है. तो सादा जी ने क्या बताइए बात ना कि हमें कंटिन्यूस क्या करना है ना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, हर ख्वाहिश यानी अपनी रुकावटों को पीछे डालना है और अपनी ख्वाहिश को सामने रखते हुए कि अगर मेरा या आपका दिल चाहता है कि मैं अपनी जात से लोगों को फायदा दूं तो मुझे और आपको ऐसा बनना पड़ेगा ना. और वो उसी वक्त होगा जब आप लोगों की नारवा बातों को या ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं आती उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने अंदर हिल्म पैदा करने पड़ेगा अगर आपके अंदर हिल्म नहीं है, है ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आई ओपनिंग आज का लेक्चर था कि वाकई आपने क्या सीखा, कॉन्स्टेंट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन शुड बी द एम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अपने नफ्स को कंट्रोल करना है और ये देखिए कि जहां जिस दिन हम इरादा करते हैं ना कि नहीं आज तो, जैसे अगर मेरे अंदर या आपके अंदर कोई बुराई है, सपोज करें कि हमारा टेम्पर बहुत जल्दी लूज हो जाता है और हम जिस दिन इरादा करते हैं उसी दिन आपको पता है ना अल्लाह ताला टेस्ट भी बहुत टाइट भेजते हैं. और फिर क्या होता है जी, होमवर्क होमवर्क के बारे में बात करते हैं और फिर वो जो हमने जो एक अपने से वो किया होता है ना लाइक इरादा किया तो वो हमारा पीछे चला जाता है. तो उस्ताद जी ने क्या कहा, ऐसे मौके पर रुकावटों को पीछे डाल दे. एक दफा फेल होंगे, दो दफा फेल होंगे, तीन दफा फेल होंगे, एक वक्त तो ऐसा आएगा ना कि आप पास हो जाएंगे क्योंकि आपकी स्ट्रगलिंग. अल्लाह ताला कहते हैं ना लैस लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए क्या है, क्या है उसकी कोशिश है ना, उसकी कोशिश है. तो कोशिश करते रहना है, कोशिश को पीछे नहीं छोड़ना कि नहीं मैं नहीं कर सकती. और रुकावट इतनी कि आप बस रुकावटों को अपना जैसे कहा जाए एम बना लें कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो जब इरादा करती हूँ फेल हो जाती हूँ, जब जिस बुराई को छोड़ने का इरादा करती हूँ फेल हो जाती हूँ. नहीं, जो रुकावटें आए उनको पीछे डाल दीजिए, अगेन नई स्ट्रगलिंग के लिए तैयार हो जाइए ना. यही जिंदगी है, अगर स्ट्रगलिंग ना हो जिंदगी के अंदर तो फिर जिंदगी में क्या क्या चीज नहीं लगेगी ना. अल्हम्दुलिल्लाह जी, मकसद पर हमेशा फोकस रहे. ठीक है, जब कोई मेहमान आ रहे होंगे उस दिन बच्चे बिगाड़ देंगे. जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, उस दिन सब अपसाइड डाउन हो जाता है. टेस्ट और सबर एंड एंगर कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है कि जब मुझे लगता है कि कोई कोई चीज मुझे बहुत बॉदर कर रही है तो मैं हमेशा यही अपने आप को सिखाती हूँ कि जहन में सोचती हूँ मेरा तो बस अजर शुरू हो गया और अब मुझे जो है अल्लाह ताला से बस रिवॉर्ड मिलने के लिए मैं मतलब अल्लाह ताला से उम्मीद रख रही होती हूँ कि बस मेरा अजर शुरू हो गया, मुझे बस अपनी जबान को कंट्रोल करना है ना. तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात वही है कि बाज़ औक़ात आप कुछ करते नहीं है, बस आपको खामोशी भी आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड दे जाती है ना. तो ऐसे मौके पर क्या करें, यलिंग करें, चिल्लाएं, चीखें बच्चों पे. बाज़ औक़ात तो समझाना पड़ता है लेकिन चीखने चिल्लाने से तो मामला समटाइम हल नहीं होता ना, और बच्चे समझ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آواز آ رہی ہے؟ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور الحمدللہ لائک وائس ڈسکنیکٹ ہو گیا. اینی ہاؤ، ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، میں نے دعا نہیں کی. میں نے سوچا کہ انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، اور آپ بس ایک میسج بتائیے کہ آپ انشاءاللہ آج کی کلاس سے کیا لے کے اٹھے. کوئی ایک لفظ میں بتا سکتا ہے کہ آج کی کلاس سے آج میں اور آپ کیا لے کے اٹھے، تاکہ ہمارے پاس کوئی ایم تو ہو نا کلاس کو لینے کے بعد، کیونکہ ہم نے آج مقصد دیکھا ہے نا کہ مقصد کیا ہونا چاہیے. جی، آئی کین ڈو اینی تھنگ آئی نیڈ ٹو. ٹھیک ہے، حرکت میں برکت. ٹھیک ہے، یعنی ہر حال میں، جیسے بھی حالات ہوں، کس طرح کی بھی کنڈیشن ہو، کسی طرح کی بھی کوئی بھی جیسے کہا جائے سچویشن ہو، مجھے آپ کو سیلف موٹیویٹ رہنا نا. یہ نہیں ہونا کہ جب دورہ قرآن آئے گا یا کوئی نیا کورس شروع ہوگا تو پھر میں کروں گی اور یہ کروں گی. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑے رہنا، اور اپنے آپ کو مستقل اس کی اسٹرگل میں تھکا دینا نا انشاءاللہ، یعنی اسی کے ارد گرد ہماری زندگی گزر جائے نا. جی الحمد، مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے، آئی کین، جی الحمد للہ، کانسٹنٹ موونگ. جی انشاءاللہ کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کی جو نیتیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ سب کو کامیاب کرے، اور آپ کی اور میرے لیے آسانی کر دے کہ جو ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، اور اس دنیا سے ہم اسی حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور مقصد بھی ہمارا یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہنا اور اس کے دیدار کو چاہنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.